आप सबका हमारे शनिवार के सत्संग कार्यक्रम में स्वागत है। तो भगवान की कृपा से हम लोग हरि कथा में भाग ले पा रहे हैं। तो हर शनिवार को हम लोग श्रीमद् भागवतम की चर्चा करते आ रहे हैं। अभी जो विषय चल रहा है वो है भगवान वराह देव ने हिरण्याक्ष का वध क्यों किया, कैसे किया, हिरण्याक्ष कौन था, कहां से आया था, और भगवान जब धरती को जल में से बाहर निकाल रहे थे तो उसने भगवान के साथ आकर भगवान के ऊपर आक्रमण क्यों किया, भगवान के साथ क्यों युद्ध करना चाहता था। जब विदुर जी ने ये पूछा मैत्रेय ऋषि से कि आप मुझे ये थोड़ा विस्तार में बताइए, मैं इसको विस्तार में श्रवण करना चाहता हूं, तो फिर मैत्रेय मुनि ने वर्णन किया दिति और कश्यप का, कि कैसे दिति और कश्यप जो एक कश्यप ऋषि जो महान ऋषि है, भगवान ब्रह्मा के पौत्र हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र हुए मारीच, मारीच के पुत्र हुए कश्यप, और जो दिति है वो दक्ष प्रजापति की कन्या है, उनकी पुत्री है। तो दिति और कश्यप के यूनियन से दिति ने गलत धारण किया, और क्योंकि दिति ने गलत समय पर कश्यप ऋषि के सामने आकर उनसे आग्रह किया कि मुझे पुत्र प्राप्ति की इच्छा है, वो समय अनुकूल नहीं था, उसकी वजह से उसके गर्भ में जो दो पुत्र प्रवेश हुए वो बहुत ही राक्षसी प्रवृत्ति के थे। तो कश्यप जी ने उनको पहले ही बता दिया दीदी को कि तुम्हारे गर्भ में जो दो पुत्र पैदा होंगे तुम्हारे गर्भ से वो बहुत बड़े राक्षस होंगे जो पूरी ब्रह्मांड को में त्राही त्राही मचा देंगे और पूरे ब्रह्मांड को कष्ट पहुंचाएंगे, और फिर भगवान खुद अवतार लेके तुम्हारे पुत्रों का वध करेंगे। तो दीदी ने जब पहले सुना कि उसके पुत्र बहुत राक्षस प्रवृत्ति के होंगे तो उसको बहुत दुख हुआ, पर फिर जब उसने सुना कि मेरे पुत्रों का वध साक्षात भगवान के हाथों से होगा तो उसको ये सुनकर प्रसन्नता भी हुई कि मेरे पुत्र भगवान का साक्षात दर्शन करेंगे और उनके हाथों से उनकी मृत्यु होगी। और जब दीदी का ये स्वरूप देखा कश्यप जी ने कि उसको अभी पाश्चात्य हो रहा है, तो एक और उन्होंने बेनिडिक्शन दिया कि तुम्हारा जो पुत्र होगा, तुम्हारे पुत्र का जो पुत्र होगा वो भगवान का बहुत उच्च कोटि का भक्त बनेगा। तो किसके बारे में उन्होंने प्रेडिक्शन किया, प्रहलाद महाराज के बारे में। दिति और कश्यप का जो पुत्र हुए वो थे हिरण्याक्ष और हिरण्यकाशिपु, और हिरण्यकाशिपु का जो पुत्र हुआ वो होगा प्रहलाद महाराज। तो यहां तक हमने पिछली बार सुना, अभी हम इसके आगे कथा को और आरंभ करेंगे, और उससे पहले हम मंगलाचरण करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीराय, नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी, ओम ज्ञान तिमिरान्तस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया
चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते यत्पिपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महाविरन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यानाम्ने गौरक्षये नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तितं। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते। तत्कांचन गौराङ्गे श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानो सुते देवी प्रणमामि हरिप्रे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्रीमद्वैतराधर शिवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मित्रऋषि जी विदुर जी को ये कथा बता रहे हैं कैसे द्वितीय और कश्यप ने दो पुत्रों को अपने यहां पर धारण किया और जैसे ही दीति के गर्भ में वो दो पुत्र आए तो जैसे कि पूरे ब्रह्मांड में अंधकार छा गया और दीति ने उनको 100 वर्षों तक अपने गर्भ में धारण करके रखा। उसका कारण क्या था? दीदी ने 100 वर्षों तक उनको अपने गर्भ में धारण करके रखा। उनकी जैसे इच्छा थी कि मैं इनको बाहर आने ही नहीं दूंगी। कारण क्या है उसका? क्योंकि जब उसने सुना कि मेरे ये पुत्र पूरे ब्रह्मांड के लिए बहुत घातक साबित होंगे, बहुत खतरनाक साबित होंगे, बहुत पूरे ब्रह्मांड को कष्ट पहुंचाएंगे, तो सबको उस कष्ट से बचाने के लिए, सब देवताओं को उस कष्ट से बचाने के लिए उन्होंने अपने गर्भ को बहुत समय तक, दीर्घ समय तक धारण करके रखा। और उसका दूसरा कारण यह भी था क्योंकि उनको इस बात का पता था कि उनके पुत्रों का भगवान के हाथों से वध हो जाएगा फाइनली। तो 100 वर्षों तक उन्होंने गर्भ को धारण किया। जब हम इस बात को सुनते हैं तो हमें उसको समझना, उसके ऊपर विश्वास करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि कैसे कोई गर्भ को 100 वर्षों तक धारण कर सकता है। यहां पर धरती के ऊपर गर्भ कितनी देर का होता है? 9 महीने का। 9 महीने से 2 हफ्ते ज्यादा हो जाए तो क्या सिचुएशन होता है? डॉक्टर की तरफ भागते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं है, कि नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगा तो शायद डॉक्टर के थ्रू सर्जरी कराना पड़ेगा। पर जब इस तरह की कथा सुनते हैं भागवत में कि उन्होंने इतने वर्षों तक गर्भ को धारण किया और कायादु का भी जिसमें बताया था कि कायादु ने भी प्रहलाद महाराज को 1000 वर्षों तक अपने गर्भ में धारण करके रखा। जितनी देर हिरण्यकशिपु अपनी ऑस्ट्रेलिटीज में लगा हुआ था साधना करने में, भगवान से वरदान प्राप्त करने के लिए, तो कयाधु ने भी उसको प्रहलाद को अपने घरों में धारण करके रखा अपनी देर। तो हमें इन चीजों को समझना, उनको रिलेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उसको कैसे समझे? उसको समझने के लिए आप ये देखिए कि ब्रह्मांड के हर ग्रह के अंदर जो समय है वो भी रिलेटिव है। तो धरती के ऊपर जो समय है और स्वर्ग लोक में जो समय है और ब्रह्म लोक में जो समय है, समय की गणना है वो रिलेटिव है। जब धरती पे 365 दिन बीतते हैं तो स्वर्ग लोक में कितना समय बीतता है? आधा दिन। हमारा एक वर्ष स्वर्ग लोक का आधा दिन है। तो जब हम ये डिफरेंस सोचते हैं कि 100 वर्षों तक या 1000 वर्षों तक उन्होंने गर्भ धारण किया, क्योंकि उस समय पर वो धरती के ऊपर ना होकर किसी अन्य ग्रह के ऊपर थे, वो हायर प्लैनेटरी सिस्टम में रह रहे थे। क्योंकि जितने भी महान महान ऋषि हैं इनके पास अपनी योगिक शक्ति के बल पर ये किसी भी ग्रह मंडल में जा सकते हैं। और जब कयाधु के समय पर भी नारद मुनि उनको अपने साथ ले गए थे अपने आश्रम में, और उनके आश्रम की कभी भी ये वर्णन नहीं आता कि उनका धरती के ऊपर आश्रम है। तो इसी हिसाब से आप समझ सकते हैं कि इतना लंबा समय का जो काल बताया जाता है उसको समझने के लिए सिर्फ एक आपके पास मैटर है कि समय की जो गणना है अलग अलग ग्रह के ऊपर अलग ढंग से है। तो दीदी ने 100 वर्षों तक अपने गर्भ को धारण करके रखा और उस समय पर पूरे ब्रह्मांड में पूरा अंधकार छा रहा था। इमेजिन करिए कि जो दो बालक पैदा होंगे उनके पैदा होने के बाद तो वो जो गुंडागर्दी करेंगे आतंक फैलाएंगे वो तो फैलाएंगे। गर्भ में आते ही उनका इतना प्रकोप था कि सूर्य और चंद्रमा और जितने भी सब अन्य प्रकाशमान ग्रह मंडल है वो सब अंधकार में हो, और जितने सब देवी देवता है इंद्र सूर्य चंद्र वरुण वायु इन सबको लग रहा था कि ये क्या हो रहा है, पूरे ब्रह्मांड में अंधकार क्यों छा रहा है, जैसे पूरे ब्रह्मांड में काला घना बादल छा गया हो, पूरा अंधकार छा गया हो, पूरा धुआं छा गया हो पूरे ब्रह्मांड में। और सब देवी देवता मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी से प्रार्थना करने लगे, उनको पूछने लगे कि ये जो पूरा अंधकार छा गया है पूरे ब्रह्मांड में उसका कारण क्या है, आप उसका कुछ निवारण कीजिए। तो ब्रह्मा जी को अलग अलग ढंग से प्रार्थना करने लगे, स्तुति करने लगे। जब किसी बड़ी हस्ती के पास जाते हैं तो जाते ही अपनी रिक्वेस्ट सुनाने के बजाय उनकी बड़ी तारीफ करते हैं, आपके इतने ऊंचे पद पर है, आप तो ये भी कर सकते हैं, आप वो भी कर सकते हैं, आप इस चीज को कंट्रोल कर सकते हैं, तब आप अपनी प्रॉब्लम बताते हैं। तो अच्छा मेरी ये छोटी सी प्रॉब्लम है तो कृपया करके आप इसको भी थोड़ा सुलझा दीजिए, होता ही नहीं। तो ऐसे ही सब देवी देवता ब्रह्मा जी के पास गए और जाकर पहले उनकी खूब स्तुति करने लगे। कैसे स्तुति कर रहे हो? देव देव जगत्थाता लोकनाथ शिखामणि परेशान परेशान त्वं भूत नाम से भावित। आप तो देवताओं के देवता हैं, आप पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाले हैं, आप सब देवताओं के शिरोमणि हैं, लोकनाथ शिखामणि। जितने भी सब ग्रह हैं इस भौतिक जगत के अंदर, जितने भी सब प्राणी हैं और जितने आध्यात्मिक जगत के अंदर भी सब प्राणी हैं, आप उन सबकी भावनाओं को समझ सकते हैं, उन सबकी जो इंटरनल कॉन्शियसनेस है आप उन सबको जानते हैं। तो इस तरह से ब्रह्मा जी की स्तुति कर रहे हैं, ब्रह्मा जी को ग्लोरीफाई कर रहे हैं कि आप सबसे महान हैं, सब देवताओं के आदिदेव हैं आप, सब देवता आपसे ही प्रकट हुए हैं, इस भौतिक जगत के अंदर जितने भी प्राणी हैं वो सब आपसे ही उत्पन्न हुए हैं, इस भौतिक जगत के अंदर जितने भी ग्रह मंडल हैं उनको भी आप ही निवारण कर रहे हैं, आप ही उनका भरण पोषण कर रहे हैं, जितने इस संसार के अंदर आपने ज्ञान प्रदान किया है वेदास वो भी आपसे उत्पन्न हुए हैं। तो पूरा ब्रह्मांड जो है, पूरे जो सब प्राणी हैं इस जगत के, एक तरह से आपसे शिक्षा ग्रहण कर रही है और वेदों के सिद्धांत के अनुसार सबको पालन करता है। तो इस तरह से ब्रह्मा जी की स्तुति कर रहे हैं। तो कुछ स्तुति इस तरह की भी है जैसे वो ब्रह्मा जी को परम भगवान के साथ भगवान विष्णु भगवान कृष्ण के समान समझ रहे हो कि आप विष्णु भगवान के समान है, उनको उस लेवल का दर्जा दे रहे हैं कि आप परम भगवान है। उसका कारण यह है कि क्यों इस तरह से वो स्तुति कर रहे हैं उनकी, क्योंकि वो ब्रह्मा जी को गुरु का दर्जा दे रहे हैं। ब्रह्मा जी एक तरह से सबके गुरु हैं इस ब्रह्मांड के अंदर, क्योंकि उनसे जो वेद शास्त्र है ब्रह्मा जी से प्रकट हुए और सब वेदों के सिद्धांत के हिसाब से अगर ज्ञान प्राप्त करते हैं तो ब्रह्मा जी सबके गुरु हुए। और गुरु की स्तुति करना ये सबका कर्तव्य है। जैसे हम एक स्तुति करते हैं बहुत फेमस राइट, सब कुछ सब किसी को आता होगा, वो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात महेश्वर राइट। तो उसमें गुरु को किसके साथ कंपेयर किया जा रहा है कि गुरु साक्षात ब्रह्म है, गुरु साक्षात विष्णु है, गुरु साक्षात महेश है, भगवान शिव है। तो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मय श्री गुरवे नमः, कि मैं उस गुरु को प्रणाम करता हूं। तो गुरु क्या वास्तव में ब्रह्मा के बराबर है, विष्णु के बराबर है, महेश के बराबर है? तो गुरु एक्चुअल में ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं है, ऐसा नहीं कि गुरु ब्रह्मा विष्णु और महेश हैं, पर उनको उनके समान सम्मान दिया जाता है। तो इस प्रार्थना का मतलब क्या है कि हम उनको ब्रह्मा विष्णु महेश के समान सम्मान दे रहे हैं, उनके इक्वल सम्मान दे रहे हैं, क्योंकि वो भगवान के प्रतिनिधि हैं। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने गुरु को ही सब कुछ समझने लगते हैं, और कुछ गुरु भी ऐसे होते हैं जो बोलते हैं बस मेरा नाम लो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, बस और कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो गुरु अपने कमरे में बुलाते हैं, मंत्र देते हैं, बस ये मेरे मंत्र का जाप करो। तो एक्चुअली अगर कोई गुरु ऐसा होता है कि बोलता है मेरे मंत्र का जाप करो, बस मेरे नाम का जाप करो, और कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं ही भगवान विष्णु हूँ, मैं ही ब्रह्मा हूँ, मैं ही महेश हूँ, तो वो गुरु एक तरह से क्लियर कट होगी है। हमारा कर्तव्य है कि गुरु को भगवान के समान सम्मान दे, भगवान के इक्वली सम्मान दे, ना कि वो वास्तव में भगवान के समान है। तो यहां सब देवी देवता ब्रह्मा जी को इस तरह से स्तुति कर रहे हैं जैसे कि वो उनको भगवान विष्णु के समान तुलना कर रहे हैं कि आप परम भगवान के समान हो, पर वास्तव में वो उनको एक तरह से सम्मान दे रहे हैं क्योंकि वो आदि गुरु है, सबके गुरु है। तो इस सेक्शन को क्योंकि वो इस तरह की प्रार्थना यहाँ पर जो श्लोक बोल रहे हैं राइट, जो पीछे आ रहा है श्लोक पढ़ के बताया देव देव जगत धाता लोकनाथ शिखा मने। तो जो हम इस तरह की प्रार्थना पढ़ते हैं, ये श्लोक पढ़ते हैं शास्त्रों में, तो कुछ लोग इसको ही एक सिद्धांत ले लेते हैं कि हाँ ब्रह्मा भी भगवान विष्णु के बराबर है, फिर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों बराबर है, तीनों में कोई डिफरेंस नहीं है। लोगों के अंदर ये एक भाव होता है कि त्रिमूर्ति की तीनों बराबर है, पर साक्षात ये शास्त्रों में बहुत क्लियरली बताया गया है कि ब्रह्मा की स्थिति क्या है, उनकी पोजीशन क्या है, भगवान शिव की स्थिति क्या है, उनकी पोजीशन क्या है, और परम भगवान कौन है, भगवान विष्णु भगवान कृष्ण जो परम भगवान है। क्योंकि भागवत का जो दूसरा स्कंद है उसमें हमने सुना था कि कैसे ब्रह्मा जी जब भगवान विष्णु की नाभि से प्रकट हुए और वो जो भौतिक जगत की सृजना करना चाहते थे तो उन्होंने भगवान की खूब आराधना किया, भगवान का ध्यान लगाया, और फिर भगवान विष्णु ने उनको दर्शन दिया और उनको चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान दिया, भगवान ने उनको अपने वैकुंठ जगत का दर्शन कराया। तो ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के समान नहीं है, ब्रह्मा जी भी एक जीवात्मा है, पर भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं और भगवान ने उनको ये एक कार्य दिया है कि आप इस सृष्टि की रचना कीजिए। तो उस हिसाब से ब्रह्मा जी की पोजीशन बहुत सुपीरियर पोजीशन है, नो डाउट, पर फिर भी वो भगवान विष्णु के बराबर नहीं है। तो कुछ लोग ये शास्त्रों का एक एक बीच में से श्लोक ले लेते हैं और उसी को लेकर फिर आर्ग्यूमेंट करते हैं कि देखिए आप कैसे बोल सकते हैं कि ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के बराबर नहीं है। देखिए श्लोक में तो साफ साफ लिखा हुआ है, पर उस श्लोक का जो पूरा इंटेंशन है उसका रीजन क्या है उस चीज को वहां पर बोले जाने का वो समझना चाहिए। तो जब सब देवताओं ने इस तरह से ब्रह्मा जी का स्तुति किया तो ब्रह्मा जी उनकी स्तुति से प्रसन्न हुए और फिर उन्होंने जब देवताओं ने पूछा कि आप इस जो पूरा अंधकार छा गया है पूरे ब्रह्मांड में इसका कुछ निवारण कीजिए, उसके लिए हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, तो ब्रह्मा जी ने बताया कि मैं आपको उसका कारण बताता हूं कि अंधकार क्यों छाया है। और जे दो बालक दीदी के गर्भ में आए हैं वो वास्तव में है कौन, तो ब्रह्मा जी उनको एक हिस्ट्री सुनाते हैं। कथा के अंदर एक कथा चल रही है, तो ब्रह्मा जी उनको एक कथा सुनाना शुरू करते हैं कि मेरे चार पुत्र थे जो तुम्हारे बड़े भाई हैं। तो इंदिरा जी देवताओं को बता रहे हैं कि मेरे चार पुत्र सनक सनातन सनंदन सनत कुमार जो कि तुम्हारे बड़े भाई हैं, क्योंकि वो चार कुमार जो थे सबसे पहले ब्रह्मा जी से प्रकट हुए, पर वो ब्रह्मा जी की आज्ञा का पालन नहीं करना चाहते थे इस सृष्टि की में जो पॉपुलेशन है उसको बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट लेके आने के लिए, और वो पूरी तरह से भगवान में अपना ध्यान लगाना चाहते थे और अपने योग बल से वो हमेशा 5 साल के बालक की स्थिति में ही रहे। तो जब चतुष कुमार को आप कहीं भी उनका पिक्चर डिस्क्रिप्शन देखते हो तो उनको दिखाया जाता है कि जैसे 5 वर्ष की अवस्था के बालक नग्न अवस्था में बस ऐसे इधर उधर घूम रहे हैं, वो पूरा ब्रह्मांड में कहीं भी जा सकते हैं और भगवान का प्रचार कर रहे हैं, तो उनको इस तरह से दिखाया जाता है। तो ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि वो जो चतुष कुमार थे जो अपनी इच्छा से पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी भ्रमण कर सकते हैं, तो एक बार भ्रमण करते करते भगवान की योग माया के बल पर वो वैकुंठ जगत में पहुंचे। वो पहले तो स्पिरिचुअल साइड जो आध्यात्मिक आकाश है आध्यात्मिक जगत है वहां पर पहुंचे और स्पिरिचुअल साइड में उनको बहुत सारे वैकुंठ जगत दिखाई दिए, तो वो एक वैकुंठ जगत के अंदर पहुंचे। तो देखिए यहां पर भी क्लियर कट डिस्क्रिप्शन में बताया जा रहा है कि जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है जो आध्यात्मिक आकाश है वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि वहां पर सिर्फ प्रकाश है और कुछ नहीं है। कुछ लोगों को लगता है कि मोक्ष प्राप्त करने के बाद तो भगवान में लीन हो जाएंगे, भगवान एक सिर्फ प्रकाश है भगवान एक एनर्जी है तो हम भी उसमें लीन हो जाएंगे, तो एक्चुअली वो जो अंडरस्टैंडिंग है वो सही नहीं है। भगवान के प्रकाश में लीन हो जाना जिसको कि ब्रह्म ज्योति बोलते हैं, ब्रह्म ज्योति भगवान के शरीर से निकलने वाला प्रकाश है, तो भगवान के शरीर से इतनी आभा प्रकट होती है इतनी आभा फूटती है प्रकाश जिसको हम ब्रह्म ज्योति बोलते हैं, और ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाना सबसे निम्न श्रेणी का मोक्ष है। तो जो जब वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड पहुंचे तो उनको आध्यात्मिक जगत बहुत सारे वैकुंठ जगत दिखाई दिए, और वो पहुंचे कैसे थे एक्चुअली तो इसमें भी एक पहले डिस्क्रिप्शन आता है कि ब्रह्मा जी को वैकुंठ जगत का दर्शन किया हुआ है पहले, जब भगवान ने उनको वैकुंठ जगत का दर्शन कराया तो जब ये चतुष कुमार एक बार घूमते घूमते ब्रह्मा जी के पास आए मिलने के लिए तो ब्रह्मा जी ने बोला तुम ये सब क्या ब्रह्मवादी ब्रह्मवादी भगवान है प्रकाश है उसमें भगवान के ऊपर ध्यान लगाते हो भगवान के पर्सनल एस्पेक्ट के ऊपर, कभी भगवान के साथ दर्शन भी करो, मैंने भगवान के दर्शन किए भगवान का बहुत सुंदर रूप है तो कभी भगवान के दर्शन भी करो, मैंने तो भगवान के दर्शन किए उनसे हाथ भी मिलाया है। तो उन्होंने चतुष कुमार को इस तरह से प्रेरित किया कि आप कभी भगवान के धाम में जाकर भगवान के दर्शन करो। तो चतुष कुमार घूमते घूमते स्पिरिचुअल वर्ल्ड में पहुंचे भगवान की योग माया के बल पर और एक वैकुंठ जगत के अंदर पहुंचे। वैकुंठ जगत और अध्यात्म जो हमारा ये भौतिक जगत है उसमें क्या अंतर है, जब हम बोलते हैं वैकुंठ, वैकुंठ का मतलब क्या है? जहां किसी तरह की कोई कुंठा नहीं है। तो ये जो भौतिक जगत है इसको बोलते हैं कुंठ जगत, और जो आध्यात्मिक जगत है उसको बोलते हैं वैकुंठ जगत। कुंठ जगत का मतलब यहां पर प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है, मुसीबतें ही मुसीबतें हैं, जन्म मृत्यु जरायादि दुख दोष दर्शिना। भगवान भगवत गीता में बोलते हैं कि चार तरह के दोषों को हर किसी को देखना चाहिए। जन्म, तो जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, जन्म के समय ही उसकी मृत्यु साथ में खड़ा हुई है। जन्म मृत्यु जरा बुढ़ापा, इस समय में आज पॉपुलेशन क्या है? 60-40 का रेशियो होगा, 70-30 का रेशियो होगा। तो क्या हम बुढ़ापे को रोक सकते हैं? जितना मर्जी हम प्रयत्न कर रहे हैं पर बुढ़ापे को रोक नहीं सकते। जितना मर्जी हम बालों को काला कर लें, डाई लगा लें, जितना मर्जी दांतों के अंदर ब्रेसेस लगा लें या नकली दांत लाके लगा लें, जितना मर्जी आंखों के ऊपर चश्मा पहन लें, लाठी का सहारा लेकर चल लें, पर बुढ़ापे को छुपाया नहीं जा सकता। जितने मर्जी फेस लिफ्टिंग क्रीम्स लगा लें, बुढ़ापा आएगा ही आएगा, और बुढ़ापे के साथ और क्या आएगा? बुढ़ापे के साथ बीमारियां भी आएंगी। बीमारियां बुढ़ापे के साथ नहीं, बीमारियां तो जन्म के साथ ही शुरू हो जाती है। आजकल आप देखिए पैदा होते ही बच्चे को बीमारियां लगी, किसी को हार्ट की बीमारी है, किसी को लीवर की प्रॉब्लम है, किसी को सांस लेने की प्रॉब्लम है, तो कुछ ना कुछ बीमारियां बचपन से ही पैदा हो जाती है। इतने छोटे छोटे बच्चों का ऑपरेशन होता है, दिल का ऑपरेशन हो रहा है, कुछ और अन्य तरह की बीमारियां लग रही है। तो ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये लक्षण जो है जो भौतिक जगत के लक्षण है। इसके सिवाय और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं इस भौतिक जगत के अंदर। और क्या प्रॉब्लम्स हैं? क्यों इस जगत को कुंठ जगत बोलते हैं? ये चार प्रॉब्लम्स तो है ही है, इसके सिवाय तीन तरह की प्रॉब्लम्स बताई जाती हैं। आदि आत्मिक क्लेश, आदि दैविक क्लेश, आदि भौतिक क्लेश। तो इस संसार के अंदर जो मुसीबतें आती हैं, एक तो हमारे खुद की बॉडी और माइंड की वजह से, बॉडी साथ नहीं देती है, बुढ़ापा आना शुरू हो जाता है, घुटने दर्द करने लगते हैं, देख नहीं सकते, चल नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, तो सब प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। तो हमारे खुद का जो शरीर है हमें कष्ट प्रदान करता है, और माइंड, शरीर से ज्यादा जो मन है, जो उससे ज्यादा कष्ट आता है। मन कभी चैन से बैठने नहीं देता, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, एनवी, द्वेष की भावना दूसरों से। तो ये सब कुंठ जगत के लक्षण है। तो आदि आत्मिक क्लेश और फिर आदि भौतिक क्लेश। आदि भौतिक क्लेश क्या है? जो अन्य प्राणियों की वजह से हमें क्लेश मिलता है, होता है जीवन में। कुछ अन्य प्राणी हमें कष्ट देते हैं, हमारा बॉस हो सकता है, हमारा किराएदार हो सकता है, हमारा पड़ोस वाला हो सकता है, पड़ोसी का कुत्ता हो सकता है, एक मॉस्किटो हो सकता है। तो अन्य प्राणी जो हमें कष्ट देते हैं वो है आदि भौतिक क्लेश, और फिर आदि दैविक क्लेश जो प्रकृति की वजह से कष्ट आता है। बहुत सारी बारिश, बहुत सारी स्नो पड़ जाना, सुनामी आ जाना, भूचाल आ जाना, और आज तो एक नई ऐसे कष्ट चल रहा है, कोरोना वायरस का कष्ट, एक छोटा सा विषाणु है जिसने पूरी दुनिया को घुटनों के बल पे टेक दिया। तो इस भौतिक जगत के अंदर हमेशा कष्ट रहेंगे, इसको हम कभी भी ऐसा नहीं सोच सकते कि चलो ये टेम्पररी थोड़ी देर के लिए कष्ट है, बाद में तो आनंद ही आनंद है। वास्तव में आनंद थोड़ी देर के लिए हो सकता है, टेम्पररी, ज्यादा समय के लिए कष्ट रहता है। पर इसके विपरीत जो आध्यात्मिक जगत है उसके अंदर इस तरह की कोई स्थिति नहीं है, ना कोई जन्म मृत्यु जरा व्याधि है, वहां पर कोई बुढ़ापा नहीं है, कोई बीमारियां नहीं है, सब कोई नवयुवक किशोर अवस्था में रहते हैं, वहां पर किसी तरह की कोई द्वेष नहीं है, कोई एंजाइटी नहीं है, कोई डिप्रेशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि किसी को सोने के लिए डिप्रेशन की गोलियां खानी पड़ेगी, नींद की गोलियां खानी पड़ेगी, एंटी डिप्रेशन और वो सब गोलियां खाने की जरूरत नहीं है वहां पर, वो सिर्फ भौतिक जगत के अंदर ही है। तो वो भगवान का वैकुंठ जगत, इसलिए भौतिक जगत को भगवान क्या बोल रहे हैं, दुखालय शाश्वतम। ये जो भौतिक जगत है ये दुखों का घर है, ये टेम्परेरी है, इसको अपना परमानेंट घर समझने की गलती मत करो। और इसलिए भगवान भगवदगीता में, आजकल हम पुरुषोत्तम मंच चल रहा है, तो भगवान के जो भगवदगीता का 15वां अध्याय है पुरुषोत्तम योग, उसका विशेष महत्व है। और उस अध्याय में भगवान क्या बता रहे हैं, भगवान बता रहे हैं कि इस भौतिक जगत से निकल कर अपना जो परमानेंट तुम्हारा घर है, आध्यात्मिक जगत में जो तुम्हारा घर है, उसको ढूंढने की कोशिश करो, उसको खोजने के, वहां पर पहुंचने की कोशिश करो। और उस भौतिक जगत की स्थिति क्या है, उसके लक्षण क्या है, न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। तो भगवान बता रहे वो मेरा परम धाम है, उसके लक्षण क्या है, न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावक, वहां पर ना तो किसी सूर्य की जरूरत है, ना ही किसी चंद्रमा की जरूरत है, ना ही अग्नि की जरूरत है प्रकाश देने के लिए, वो हमेशा प्रकाशमान रहता है। और उस आध्यात्मिक जगत में पहुंचने के बाद कोई व्यक्ति लौटकर वापस भौतिक जगत में नहीं आता। तो भगवान उस आध्यात्मिक जगत के बारे में सिर्फ एक हिंट दे रहे हैं भगवदगीता में कि वो मेरा आध्यात्मिक जगत है, वहां पर आ जाओ। सबको इन्विटेशन दे रहे हैं, कोई आ जाए आपको इन्विटेशन दे रहे हैं, हमारा शादी है या बर्थडे का फंक्शन है उस रिजोर्ट में हम कर रहे हैं, आइए इनविटेशन दे रहे हैं आपको। पर कोई परमानेंटली आपको रहने देगा वहां पर? तो 3 घंटे का प्रोग्राम हुआ उसके बाद तो हॉल वाले भी बोल देंगे जाओ अभी बंद करने का समय हो गया, खाया पिया भाई खिसको यहां से आप। तो वहां पर आप जितना मर्जी आनंद कर लो वो 3 घंटे की 6 घंटे की पार्टी में, पर वापस आपको आपके घर में वापस आना है लौट। पर भगवान का आध्यात्मिक जगत कैसा है, भगवान फुल इनविटेशन कार्ड दे रहे हैं आपको, आ जाओ। और उसके ऊपर कोई एक्सपायरी डेट नहीं है कि कितनी देर बाद वापस आना है आपने, परमानेंटली वहां पर रहो, खूब मजे करो। तो भगवदगीता में भगवान ने सिर्फ उसका एक हिंट दिया है, इसका ट्रेलर दिखाया है। भागवतम में बहुत विस्तार से उस आध्यात्मिक जगत के बारे में बताया जा रहा है कि उस आध्यात्मिक जगत में और होता क्या है, किस तरह की चीजें होती हैं वहां पर, किस तरह के व्यक्ति होते हैं वहां पर, किस तरह के आनंद है वहां पर, और ये सब क्यों बताया जा रहा है, ताकि हम उसको समझकर अपनी एक इच्छा पैदा कर सके कि हाँ मुझे वहां पर जाना है, वहां पर ही रियल आनंद है। जैसे एक बार एक फिल्म का गाना आया, उस फिल्म के गाने के जो वर्ड्स थे, लिरिक्स था, वो क्या था, आ तुझे मैं लेके चलू उस गगन के तले, जहां कोई दुख भी ना हो, कोई आंसू ना हो, बस प्यार ही प्यार पले। तो किशोर कुमार जी ने ये गाना लिखा, एक व्यक्ति ने ये गाना सुना, वो इतना कष्ट में था इस जगत के अंदर, वाकई में सोचता था कि वाकई में इस दुनिया में ऐसी भी कोई जगह है जहां पर कोई नफरत नहीं है, कोई कष्ट नहीं है, कोई आंसू नहीं है, सब बस प्यार ही प्यार है। वो पहुंचा ढूंढते ढूंढते पूछते कि कोई मुझे बता सकता है कि वो जगह क्या है, मैं जाना चाहूंगा वहां पर। तो किशोर कुमार के पास भी पहुंच गया, आपने ये गाना लिखा है कि आप बता सकते हैं कहां पर है वो जगह? तो किशोर कुमार जी ने बोला, मैंने तो गाना लिख दिया, बोल अभी जगह होगी कहीं तुम ढूंढो। तो व्यक्ति बहुत निराश हुआ कि मैं ढूंढना चाहता हूं वो जगह कहां पर है, कौन बता सकता है मुझे। ऐसे ही एक दिन वो व्यक्ति एक इस्कॉन मंदिर में पहुंचा दर्शन करने के लिए भगवान के, और उस समय पर भगवान की कथा चल रही थी। व्यक्ति जब दर्शन ले रहा था तो जो कथा कर रहे थे
जो प्रवचन दे रहे थे उस समय पर आध्यात्मिक जगत का वर्णन कर रहे थे कि आध्यात्मिक जगत में ऐसा है, वहां पर कोई कुंठा नहीं है, वहां पर सब खूब आनंद से रहते हैं, एवरी स्टेप इज अ डांस, एवरी वर्ड इज अ सॉन्ग। तो जब वो दर्शन लेते लेते उसने ये सुना, उसको बड़ा आकर्षण हो, वो भी बैठ गया प्रवचन के अंदर, पूरा प्रवचन सुना। बाद में वो जाके जो प्रवचन दे रहे थे उनको मिला कि मैंने ये सुना आपके प्रवचन में, तो वाकई में ऐसी कोई जगह है क्या? तो उन्होंने बोला, लगता है आपने पूरा प्रवचन मिस कर दिया, आपने बाद में थोड़ा बस फाइनली कंक्लूडिंग वर्ड्स ही सुने। तो एक्चुअल में आध्यात्मिक जगत जो भगवान का धाम है, वैकुंठ जगत, उसमें सब आनंद ही आनंद है। तो ब्रह्मा जी यहां पर बता रहे हैं कि एक बार चतुष्कुमार घूमते घूमते वैकुंठ धाम में पहुंच गए, और उस वैकुंठ धाम का डिस्क्रिप्शन क्या है, उस वैकुंठ धाम में जितने भी प्राणी हैं, सबसे पहले तो वो सब लोग किशोर अवस्था में, नव युवक अवस्था में दिखाई देते हैं, सब भगवान के समान दिखाई देते हैं, चतुर्भुज रूप में भगवान के समान, सब पीतांबर पहने हुए, चतुष्भुज, सब अच्छे अच्छे आभूषण पहने हुए, और उनकी जो हमेशा इच्छा रहती है, अपनी इंद्रिय तृप्ति करने की इच्छा कभी भी नहीं होती, हमेशा भगवान की सेवा में लीन रहते हैं। उनका जो मुख्य एक्टिविटी है, मुख्य उद्देश्य है हमेशा भगवान की सेवा करना। और जो भगवान है, वहां पर उन्होंने भगवान के दर्शन बताए कि आध्यात्मिक जगत के अंदर, वैकुंठ जगत के अंदर भगवान जो है, जो कि आदि पुरुष हैं, जिनके माध्यम से सब कुछ उत्पन्न हुआ, जिनको कि शास्त्रों के माध्यम से समझा जा सकता है। हम भगवान को ऐसे नहीं समझ सकते, एक कोई ऐसा नहीं बोल सकता कि पहले मुझे दिखाओ भगवान कैसे हैं, भगवान कौन है, पहले मुझे भगवान अपना दर्शन दे, तब मुझे जाकर भगवान के ऊपर विश्वास होगा। तो भगवान को ऐसे नहीं समझ सकते कि डिमांड करके आप बोलो कि मुझे पहले भगवान को दर्शन करना है, पहले देखना है, फिर मैं विश्वास करूंगा। तो भगवान को कैसे समझा जा सकता है, शास्त्रों के माध्यम से। और भगवान का जो आध्यात्मिक जगत है उसको भी शास्त्रों के माध्यम से समझा जा सकता है। अगर हमें आध्यात्मिक जगत में जाना है तो उसके लिए शास्त्रों के माध्यम से सुनिए कि उसका क्या डिस्क्रिप्शन है। जैसे इस भौतिक जगत के अंदर भी आप हर एक जगह के ऊपर नहीं गए हो। अगर यहां पर बैठे बैठे आपको कोई बताए कि दुनिया के इस कोने में ये ऐसी भी कोई जगह है, ऐसा कोई एक आइलैंड है जहां पर इस तरह की चीजें हैं, पर आप बोलोगे कि मैं कैसे यकीन करूं, मैंने तो उसको देखा नहीं। पर किसी से सुन के, उसके बारे में सुन के, किसी ने कोई वहां पर गया है, वापस आके उसने आपको फोटो दिखाया, देखो ये ऐसी जगह है, तो आप उसके ऊपर विश्वास करोगे? आपने उसको, चाहे आपके पास क्षमता नहीं है कि मैं पैसे खर्च करके टिकट लेके वहां पर स्वयं जा सकूं, पर आप बैठे बैठे पिक्चरों के माध्यम से, किसी मूवी के माध्यम से आपको उसका दर्शन कराया जा सकता है। आप सुन के, जो वहां पर गया है, जिसने देखा है, वो आपको बताए, तो उसके माध्यम से आप उसको समझ सकते हो। तो वैसे ही भगवान के आध्यात्मिक जगत को हमें पहले दूसरों से सुनकर, जो शास्त्रों में बताया गया है उसको सुनकर आध्यात्मिक जगत के बारे में समझना चाहिए। शास्त्रों के अंदर जितना भी ये बताया गया है भगवान के बारे में, भगवान के धाम के बारे में, उस सबका डिस्क्रिप्शन क्यों बताया गया है? क्योंकि हमें हमारी जो मेमोरी है उसको वापस लाने के लिए, अभी आप ऐसा समझिए जैसे कोई मरीज है जिसको, जिसने अपना जो पूरा मेमोरी है वो खो दिया है, पूरा मेमोरी उसका इरेज हो चुका है, अभी उसको अपना पुराना कुछ भी याद नहीं है कि मेरा घर कहाँ था, मैं क्या करता था, कहाँ रहता था, कौन मेरे परिवारजन थे, उसको अभी कुछ याद नहीं है, उसने सब अपना मेमोरी खो दिया। उसको डॉक्टर के पास लेके जाओगे तो डॉक्टर इलाज बताएगा कि उसको कैसे उसकी मेमोरी वापस याद दिलाई जा सकती है। तो डॉक्टर क्या बताता है, आप इनके साथ पुराने समय की बातें करो, उनको याद दिलाने की कोशिश करो,
जब आप इनके साथ वो पुरानी बातें करोगे तो धीरे धीरे शायद इनको याद आना शुरू हो जाए। आप इनको वो पुरानी पुरानी जगहों पर लेके जाओ जहां पर वो रहे थे, जहां पर उन्होंने कुछ किया था, जो इनकी फेवरेट कुछ जगह थी, तो वहां पर उनको लेके जाओ। अगर वो भी सब नहीं हो पाता तो क्या होता है, तो मरीज को क्या देते हैं, शॉक ट्रीटमेंट, बिजली का करंट लगाते हैं ताकि उसकी थोड़ी बुद्धि वापस आ जाए। तो वैसे ही हम लोग अपनी जो मेमोरी है वो भूल चुके हैं कि हम भगवान के धाम में थे। हमारा जो ओरिजिनल घर जो है वो भगवान का धाम है और हमें वहां पर वापस जाना है। हम अपनी वो बुद्धि को भूलकर इस भौतिक जगत के अंदर सड़ रहे हैं। तो प्रभुपाद ये वर्ड यूज करते हैं, एक्चुअली हम हर जन्म जन्मांतर के बाद इस भौतिक जगत के अंदर घूम रहे हैं, हम यहां पर सड़ रहे हैं। जैसे बोलते हैं ना कि वो वेजिटेबल गल गई सड़ गई, उसी तरह से हमारी स्थिति है। और हमें उस आध्यात्मिक जगत को वापस समझना है, उसका वापस से उसको याद करना है कि हम कहां पर बिलोंग करते हैं, हमें वहां पर वापस जाना है। तो ये जो शास्त्र है हमारी पूरी मेमोरी को वापस लाने के लिए वो सब चीजें हमें बार बार बता रहे हैं। तो जो भगवान है वो आदि पुरुष है, उनसे ही सब प्रकट हुआ है, उनसे ही सब कुछ निकला है और उनको हम सिर्फ शास्त्रों के माध्यम से ही समझ सकते हैं। तो भगवान अपने सब भक्तों को, भक्तजनों को, सब जीवात्माओं को अपने पास वापस बुलाने के लिए बहुत तत्पर रहते हैं। हमारी इच्छा नहीं है वहां जाने की, पर भगवान बहुत उत्सुक है हमें वहां पर वापस बुलाने के लिए। और इसलिए भगवान अन्य अन्य अवतार ग्रहण करके इस भौतिक जगत में भी आते हैं कि अपनी लीलाओं के माध्यम से वो जीव को अपने अंदर अपने ऊपर आकर्षित कर सके। अगर हम भगवान की ओर एक कदम आगे बढ़ाते हैं तो भगवान 10 कदम आगे बढ़ाकर हमें वापस खींचने के लिए तत्पर है। तो ऐसे भगवान का उन्होंने दर्शन कराया जो हम सबको वापस बुलाने के लिए बहुत उत्सुक हैं। फिर उन्होंने बताया आध्यात्मिक जगत के अंदर जितने भी वन हैं, फॉरेस्ट हैं, वहां पर इतने अच्छे अच्छे वृक्ष लगे हुए हैं जो कि कल्प वृक्ष के समान है। अगर भौतिक जगत में हमारे पास एक कल्प वृक्ष भी आ जाए तो लगेगा जैसे हम सब अपनी इच्छाएं पूर्ण कर सकते हैं। कल्प वृक्ष क्या होता है, जो इच्छा अनुसार आपको फल प्रदान करे। आपने कल्प वृक्ष के सामने जाकर बोला अच्छा मुझे आम खाना है तो आम प्रकट हो गए वृक्ष के ऊपर। आपने बोला मुझे आम नहीं खाना, मुझे सीधा मैंगो का ड्रिंक पीना है, मैंगो जूस ही पीना है, तो सीधा मैंगो जूस आ जाएगा। तो ऐसा कल्प वृक्ष है, पर आध्यात्मिक जगत के अंदर हर वृक्ष ही कल्प वृक्ष है और उसपे हर सीजन की जितने भी फ्रूट्स होते हैं हर समय उपलब्ध रहते हैं। तो हमारे यहां पर तो एक फ्रूट एक सीजन में आएगा और कोई फ्रूट 2 महीने के लिए 3 महीने के लिए रहेगा, फिर आपको एक साल इंतजार करना पड़ेगा कि कब वो फ्रूट वापस आएगा अपने सीजन में। तो पर आध्यात्मिक जगत के अंदर हर फ्रूट हर सीजन में उपलब्ध है और वहां पर जो वनों के अंदर जो पुष्प हैं, इतने सुगंधित पुष्प हैं कि पूरा वातावरण सुगंध से महक रहा है। और ऐसा बताया जाता है कि अगर वो एक पुष्प धरती पर आ जाए तो एक पुष्प की इतनी महक है कि पूरी धरती सुगंधित हो जाएगी। इमेजिन करिए आपकी धरती एक फूल लाके रखी है, उसकी महक थोड़ी उतने एरिया में सीमित रहेगी और बाकी अगर उसमें महक होगी तो ज्यादातर तो अधिकांश फूल तो ऐसे होते हैं जिनके अंदर कोई महक है ही नहीं है, सिर्फ दिखावे के लिए है, अलग अलग कलर अच्छे अच्छे देखने में लगते हैं पर महक है ही नहीं है। पर आध्यात्मिक जगत में इतनी महक वाले फूल हैं कि एक फूल से पूरी पृथ्वी सुगंधित हो सकती है। तो वहां पर हर वृक्ष कल्प वृक्ष है, हर तरह के फल उपलब्ध हैं हर समय पर। और उसके बाद जो और अन्य अन्य तरह की विविधताएं हैं वहां पर, जो वैरायटी है वहां पर उसका वर्णन किया गया है। वहां पर भी हर तरह की वैरायटी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का मानना होता है कि आध्यात्मिक जगत मीन्स सिर्फ प्रकाश, जैसे पहले बताया इम्पर्सनलिज्म, राइट, ब्रह्मवादी जो फिलोसफी होती है कि भगवान सिर्फ ब्रह्म है, वहां पर कुछ वैरायटी नहीं है, बस सिर्फ वननेस है। पर ऐसा नहीं है, वहां पर सब तरह की वैरायटी है आध्यात्मिक जगत के अंदर। वहां पर पुरुष भी है, स्त्री भी है, पशु पक्षी फल फूल पौधे सब कुछ है। तो वहां पर भी पुरुष भी है स्त्री भी है। तो पुरुष जो है अपनी पत्नियों के साथ जो विमान है आध्यात्मिक जगत के, वो विमानों के अंदर बैठकर घूमते हैं। पर ऐसा नहीं कि वो विमान के अंदर बैठ के घूम रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, अपना मनोरंजन करने के लिए। और वो विमान भी ऐसे नहीं है भौतिक जगत की तरह वाले विमान। भौतिक जगत के विमान क्या है, उसके अंदर आपको पेट्रोल डालना पड़ेगा, कुछ फ्यूल डालना पड़ेगा और उतने लिमिट में वो चलेगा। पर आध्यात्मिक जगत के विमान जो है वो मन की गति से चलते हैं, उसमें कोई फ्यूल डालने की जरूरत नहीं है, फ्यूल सिर्फ आपके थॉट्स हैं। तो वो मन के अनुसार चलते हैं आपको एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाने के लिए। और पुरुष स्त्री जो पति पत्नी के रूप में है वो उन विमानों के अंदर बैठकर घूम रहे हैं आकाश में, और पर उनका एक ही कार्य है, और वो कार्य क्या है, भगवान की स्तुति गाना। तो ऐसा नहीं है कि कुछ विमानों में घूमते हुए फिल्मी गाने को जा रहे हैं, सिर्फ भगवान की स्तुति, भगवान के नाम का जप करना, भगवान का कीर्तन करना, सिर्फ ये उनकी एक प्राइमरी एक्टिविटी। उनका पूरा जो ध्यान है भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भगवान की सेवा में। इवन दो वहां पर इतने अच्छे पुष्प हैं जिनकी महक पूरी हवा में फैल रही है, और ऐसे पुष्प हैं एक्चुअली कि उनका जो हनी होता है वो भी हवा में घुल रहा है, और वो हनी जो शहद हवा में घुला हुआ हवा के साथ बैठकर इनके नाक तक पहुंच रहा है, और उनको लगता है कि ये हमारी भक्ति में बाधा बन रहा है, इसे जो खुशबू आ रही है वो हमारी भक्ति में बाधा बन रही है। तो उनका पूरा जो ध्यान है भगवान की भक्ति में, भगवान की स्तुति गाने में, ना कि अपनी इंद्रिय तृप्ति करने में। और फिर वहां पर अन्य बहुत तरह के बर्ड्स पशु पक्षी हैं, मयूर शुक कुकू बर्ड हंस, तो इतने तरह के जो पक्षी पशु पक्षी हैं जो कि बहुत मधुर वाणी में गाते हैं। अभी मोर क्या करता है, मोर नाचता है वो, तो जब उसको अच्छा म्यूजिक, जब इवन आकाश में बादल आते हैं वर्षा का समय होता है तो जो मोर है वो नाचने लगता है। तो ऐसे ही जो तोता होता है, तोता भी अच्छे से गाता है, तोते की जो आवाज है मधुर होती है, जो कोयल होती है उसकी आवाज बहुत मधुर होती है। तो बहुत सारे पशु पक्षी बहुत मधुर वाणी वाले हैं, पर जब एक भंवरा आता है वहां पर भिन भिन करता हुआ, भंवरा अपना ऐसा प्रतीत होता है जैसे वो भगवान की कथा गा रहा है, क्योंकि भंवरा जो भगवान ने फूलों की माला पहनी हुई है, भगवान वो भंवरा उन फूल की माला के इर्द गिर्द मंडरा रहा है, और ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे वो अपनी ध्वनि में भगवान की स्तुति गा रहा है, वो हरि कथा गा रहा है। और जितने भी अन्य पशु पक्षी हैं वो सब बिल्कुल चुप हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं बिल्कुल भंवरे की ध्वनि सुनने के लिए, उसके द्वारा जो हरि कथा हो रही है उसको सुनने के लिए। एक्चुअली में जो अन्य सब पक्षी हैं वो भंवरे से मधुर गाते हैं, कोयल जो है तोता जो है वो भंवरे से मधुर गाता है, पर वो सब चुप हो जाते हैं भंवरे की आवाज सुनने के लिए, उसकी ध्वनि सुनने के लिए। तो मतलब क्या है कि आध्यात्मिक जगत में किसी तरह की कोई कुंठ की भावना, कोई द्वेष की भावना नहीं है कि मैं तुमसे सुपीरियर हूं, तुम इतना क्यों बड़बड़ बड़बड़ कर रहे हो, तुम शांत हो जाओ मुझे बोलने दो। तो वहां पर इस तरह की कोई भावना नहीं है, ये भावना हमारे भौतिक जगत में ही होती है, ये कंपटीशन की टेंडेंसी, द्वेष की भावना। तो वैसे ही बताया जाता है कि वहां पर इतने अच्छे अच्छे पुष्प हैं जिनकी बहुत अच्छी महक है, पर जब वो देखते हैं कि तुलसी महारानी कैसे भगवान के जो माला जो भगवान पहन रहे हैं, तुलसी को उस माला में स्थान मिला है, जैसे ही तुलसी का आगमन होता है तो सब जो पुष्प हैं वो झुककर जैसे तुलसी को प्रणाम करते हैं। तो तुलसी की इतनी विशेषता बताई गई है क्योंकि तुलसी देवी ने बहुत समय तक ऑस्टेरिटीज किया भगवान को पाने के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए। तो उनकी जो ऑस्टेरिटीज हैं उनको समझकर जितने भी सब अन्य पुष्प हैं वो उनको सम्मान देते हैं। तो इन दोनों चीजों से, जो पशु पक्षियों का उदाहरण है और जो पुष्पों का उदाहरण है, उससे क्या समझा जा रहा है कि आध्यात्मिक जगत में किसी तरह का कोई कंपटीशन, कोई द्वेष की भावना नहीं है। भौतिक जगत में क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति ज्यादा अच्छे से गाने वाला है तो उसके अंदर एक बड़ा सुपीरियरिटी, प्राइड की भावना जाती है, मान की भावना कि मैं तुमसे बेहतर हूं, मुझे गाने दो, मैं तुमसे बेहतर बोल सकता हूं, मुझे बोलने दो। पर आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं है। एक बार एक व्यक्ति बता रहा था मेरे ऑफिस में, मैंने उनको मंदिर में आने के लिए इनवाइट किया कि आप मंदिर में आइए कभी, तो बता रहे थे कि मंदिर में जाना अच्छा नहीं लगता, मैं जाता था पहले मंदिर में, बहुत मंदिर जाता था, पर एक चीज देखा मैंने मंदिर में, ये सब जो अपने आप को भक्त बोल रहे हैं आपस में झगड़ा कर रहे थे एक दूसरे से, कि हाथों से माइक खींच रहे थे कि मैं गाऊंगा, पहले मुझे गाने का अवसर दो, पहले मुझे गाने का अवसर दो, मैं गणेश स्तुति करूंगा, मैं हनुमान स्तुति करूंगा। तो ये सब आपस में ऐसे कंपटीशन कर रहे थे, एक दूसरे से खींचातानी कर रहे थे, तो मुझे अच्छा नहीं लगा, तो उसके बाद से मैंने मंदिर जाना ही बंद कर दिया। तो कुछ मंदिरों में इस तरह का जो कॉम्पिटिशन लेवल की भावना होती है कि हमने ये मंदिर बनाया है, हम इस मंदिर के ट्रस्टी हैं, हमें पहले अवसर मिलना चाहिए, हमें पहले स्थान मिलना चाहिए। तो ये भावना जो भौतिक जगत के अंदर है, आध्यात्मिक जगत के अंदर ऐसी कोई भावना नहीं है। वो हर किसी की भावना है कि दूसरे को अधिक सम्मान दिया जाए। तो यहीं पर रहते हुए हमें उस चीज की प्रैक्टिस करनी चाहिए कि हमारे अंदर से जो ईर्ष्या द्वेष की भावना है उसको निकालकर दूसरों को सम्मान देने की भावना लेकर आए। जैसे चैतन्य महाप्रभु सिखाते हैं, अमानी न मान देना कीर्तन या सदा हरि, कि अपने सम्मान की इच्छा ना करके हमेशा दूसरों को सम्मान दिया जाए कि वो भक्त मुझसे श्रेष्ठ है, मैं तो बहुत तुच्छ श्रेणी का भक्त हूं, मैं तो बहुत स्ट्रगल कर रहा हूं अपनी साधना में, बाकी सब भक्त मुझसे श्रेष्ठ है, तो सबको सम्मान दिया जाए। अगर हम ये भावना अपने अंदर लेकर आए तब हम भगवान का स्मरण हमेशा कर सकते हैं। तो आध्यात्मिक जगत में ये सब चीजें बताई जा रही हैं, और वहां पर जो स्त्रियां हैं वो स्त्रियां लक्ष्मी के समान हैं। हर जैसे वहां पर करोड़ों करोड़ों लक्ष्मियां हैं। अभी ऐसा नहीं है कि वो लक्ष्मियां भगवान विष्णु के जो कंपेनियंस हैं डायरेक्टली, वो जितने भी अन्य पुरुष हैं उनकी पत्नियां बाकी सब स्त्रियां हैं, पर वो सब लक्ष्मी के समान हैं। और उनका कार्य क्या है, वो सब लक्ष्मियां भगवान को प्रसन्न करने में लगी हुई। और कैसे भगवान को प्रसन्न कर रही हूं, वहां पर जितना भी सब घर सब महल है वो डायमंड्स के बने हुए, सोने के बने हुए, एमरल्ड्स के बने हुए हैं, वहां पर धूल का तो कोई प्रश्न ही नहीं है, फिर भी सब लक्ष्मियां अपने हाथ में झाड़ू लेकर फर्श पर झाड़ू लगा रही हैं। तो क्या वो धूल साफ करने की कोशिश कर रही है, नहीं, वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भगवान की कृपा दृष्टि प्राप्त करने के लिए इस तरह से भगवान की सेवा में लगी है कि शायद कभी भगवान की दृष्टि हम पर पड़े, उनकी कृपा दृष्टि, भगवान हम पर प्रसन्न हो। तो वहां पर करोड़ों करोड़ों लक्ष्मियां हैं और जो सब भगवान की सेवा में लगी हुई है। तो ऐसे ही ब्रह्मा जी अपने ब्रह्म संहिता में भी ये प्रार्थना करते हैं, उसमें बताते हैं, चिंता मणि प्रकर सदमशु कल्प वृक्ष लक्षावतेषु सुरभि अभिपाल्यन्तम् लक्ष्मी सहस्र सत संभ्रम सेव्यमानम् गोविंदमादि पुरुषम् तमहं भजामि। तो ब्रह्मा जी क्या बोल रहे हैं, आदि पुरुष जो आदि पुरुष गोविंद है मैं उनको प्रणाम करता हूं, जितनी ये करोड़ों करोड़ लक्ष्मियां हैं वो उनकी सेवा करने में लगी हुई हैं। वहां पर सब चिंतामणि वृक्ष हैं, सब चिंतामणि स्टोन्स हैं, वहां पर सब कल्प वृक्ष हैं। तो भगवान वो ब्रह्मा जी अपनी ब्रह्म संहिता में भी इस तरह से आध्यात्मिक जगत का वर्णन करते हैं। और जितनी भी ये सब स्त्रियां हैं वहां पर, उन्होंने बहुत कॉस्टली एक्सपेंसिव आभूषण पहने हुए हैं, सोने के बने हुए आभूषण, जिनके अंदर बहुत एक्सपेंसिव जो पर्ल्स डायमंड्स ये सब लगे हुए हैं उनके अंदर। तो वो सब उनको कैसे उपलब्ध हो रहा है वहां पर, उसके लिए उनको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ रही है कि उनको कुछ इनकम कमानी पड़ेगी और फिर ज्वेलरी की शॉप में जाएंगे और कुछ वस्तु खरीदेंगे। भगवान की कृपा से उनको सब कुछ प्राप्त हो रहा है, सब कुछ उपलब्ध हो रहा है। यहां पर देखिए आप, एक तोले का आपको कुछ सोने का बनाना हो तो पहले उसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, फिर आप सोनार की दुकान पर जाएंगे और उससे खरीदने की कोशिश करेंगे। तो इस भौतिक जगत में थोड़ा सा सोना, थोड़ा सा ज्वेलरी बनाने के लिए आपको इतना कष्ट करना पड़ता है, इतनी मेहनत करनी पड़ती है, पर आध्यात्मिक जगत में ये सब चीजें उपलब्ध है भगवान की कृपा से। और लक्ष्मियां देवी, जो लक्ष्मी देवी हैं इतनी इतनी वहां पर, वो भी भगवान की कृपा प्राप्त करना चाहती हैं। यहां पर हम लोग लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, पर हम ये भूल जाते हैं या हमें पता ही नहीं है कि वो लक्ष्मियां भी एक्चुअली भगवान की कृपा प्राप्त करना चाहती हैं। तो अभी जैसे दिवाली आने वाली है थोड़े 5-6 हफ्ते में, तो दिवाली के समय पर लोग क्या करते हैं, उनकी क्या भावना रहती है कि हमें लक्ष्मी पूजन करना है। नहीं तो लक्ष्मी की पूजा करते हैं किस भाव से, कि हमारे घर पे सुख समृद्धि आए, ऐश्वर्य प्राप्त हो हमें, हमें लक्ष्मी देवी की कृपा चाहिए। पर एक्चुअली में लक्ष्मी की अगर हमें कृपा प्राप्त करनी है तो हमें भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करनी चाहिए, भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त करनी चाहिए। अगर भगवान की कृपा प्राप्त करेंगे तो लक्ष्मी देवी की कृपा स्वयं ही प्राप्त हो जाएगी। लक्ष्मी देवी को क्या बोलते हैं, चंचल। लक्ष्मी देवी स्वभाव से बहुत चंचल है, एक जगह पर टिकती नहीं है, पर जहां वो देखती है कि मेरे प्रभु की सेवा हो रही है, नारायण की सेवा हो रही है, तो लक्ष्मी देवी अपने आप वहां पर आ जाती है। तो अगर हमें वाकई लक्ष्मी को प्रसन्न करना है तो उसकी जगह पर हमें भगवान नारायण को प्रसन्न करना चाहिए। तो कभी भी हमारी भावना ये नहीं होनी चाहिए कि हमें सिर्फ लक्ष्मी की पूजा करनी है, अगर पूजा करनी भी है तो लक्ष्मी नारायण की इकट्ठे पूजा करनी चाहिए। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, सिर्फ लक्ष्मी की पूजा करते हैं, सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिले तन का, राइट। तो सिर्फ ये भाव रहता है, ऐसे लक्ष्मी कभी नहीं आएगी, आएगी भी तो टिकेगी नहीं। और वैसे भी जो मेंटेलिटी है सिर्फ लक्ष्मी की पूजा करने की, वो बहुत गलत मेंटेलिटी है। वो मेंटेलिटी जैसे कि रावण की मेंटेलिटी है। रावण का भाव क्या था, वो सीता को हरण करके लेके गया कि सीता चाहिए पर राम नहीं चाहिए। तो उसी तरह से अगर हम बोलेंगे लक्ष्मी चाहिए पर नारायण नहीं चाहिए, तो वो रावण वाली कुबुद्धि है। पर अगर वो वाली कुबुद्धि रखेंगे तो क्या होगा, उससे विनाश ही विनाश होगा, उससे कभी भी समृद्धि नहीं आएगी। तो इसलिए हमें लक्ष्मी के पीछे नहीं भागना चाहिए, हमें भगवान को प्रसन्न करना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी तो स्वयं भगवान के पीछे भाग रही है, उनकी कृपा दृष्टि प्राप्त करना चाहती है। तो ब्रह्मा जी ने ये सब वैकुंठ जगत का वर्णन किया और उसके आगे वो क्या बता रहे हैं कि वैकुंठ जगत में और क्या क्या चीजें हैं। वहां पर अंदर जाने के लिए वैकुंठ जगत में किस तरह की क्वालिफिकेशन चाहिए, तो वैकुंठ का डिस्क्रिप्शन बताने के बाद ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि वैकुंठ में कौन जा सकता है, हु कैन बी एलिजिबल टू एंटर इन टू वैकुंठ। तो वैकुंठ में जो मंद बुद्धि लोग हैं, जो भगवान की कथा में ध्यान ना लगाकर, भगवान की कथा सुनने में जिनको रुचि नहीं है पर वो अन्य सब विषयों में तत्पर रहते हैं उनको सुनने के लिए, वो कभी भी भगवान के धाम को प्राप्त नहीं कर सकते।
उसका विपरीत मतलब क्या हुआ कि भगवान के धाम को कौन प्राप्त कर सकता है, जिसकी रुचि हमेशा हरि कथा सुनने में है, जो भगवान की कथा सुनना चाहता है, भगवान के नाम का जप करना चाहता है, भगवान का कीर्तन श्रवण करना चाहता है, जब ये सब सुनता है, वो हरि कथा सुनता है, तो उसको बहुत आनंद की अनुभूति होती है, उसका जो बॉडी उसके शरीर के रोम रोम में रोमांच आ जाता है, तो वैसा व्यक्ति भगवान के धाम को प्राप्त कर सकता है। पर जिसकी भगवान की कथा सुनने में रुचि ही नहीं है और कथा सुनने के बजाय वो अन्य जो कुकथा है, एक तो होता है हरि कथा को छोड़कर बाकी जो अन्य विषय हैं उनको शास्त्र में क्या बोला गया, कुकथा, सब विनाश वाली चीजें हैं वो, तो जो कुकथा सुनना चाहते हैं उनमें लीन रहते हैं, उनकी पूरी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, उनका पूरा जो गुड फॉर्चून है वो सब समाप्त हो जाता है, सौभाग्य उनका जो सौभाग्य है वो नष्ट हो जाता है, दुर्भाग्य को प्राप्त करते हैं और अंधकार में चले जाते हैं। अंधकार में मतलब जो नीचे के लोक हैं, जो नर्क आदि लोक हैं, उनको प्राप्त होते हैं वो। तो यहां पर ब्रह्मा जी एक बड़ा क्लियर कट हमें इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि हमें अपने जीवन में किस चीज को धारण करना चाहिए। हमें हमेशा भगवान की कथा सुनने में तत्पर रहना चाहिए। बाकी सब जो विषय क्या है, कोई लोग न्यूज सुनना चाहते हैं, पॉलिटिक्स को सुनना चाहते हैं, ये बॉलीवुड हॉलीवुड मॉबिंग मूवीज के बारे में गॉसिप करना चाहते हैं, तो ये सब जिनका पूरा ध्यान इन सब चीजों में लगा रहता है उनकी पूरी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। शुणवती ये अन्य विषया कुकथा मति घनी, तो ये जो अन्य विषय हैं उनको कुकथा कहते हैं, उनको जो सुनते हैं तो पूरी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, मति घनी। सब कुछ कई बार लोगों को लगता है कि अरे तुमको न्यूज में इंटरेस्ट नहीं है, तुमको ये पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है, इनको सुनना चाहिए, इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए, अगर तुम अपने आप को अप टू डेट नहीं रखोगे तो तुम प्रगति कैसे कर पाओगे। बोलते हैं ना कई बार लोग, यार तो न्यूज सुनना चाहिए, पता तो होना चाहिए कि संसार में चल क्या रहा है। एक्चुअली उस सब की हमें कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उन सब चीजों से क्या हो रहा है, आप जितना आप नेगेटिविटी सुनोगे, पहले तो जितनी भी चीजें होती है इसके अंदर नेगेटिविटी ही नेगेटिविटी है, यहाँ पर बम फूटा, वहां पर ये हुआ, वहां पर इतने लोग मरे, तो पूरे समय पर इतना सब जोर शोर तमाशा पूरा आपके दिमाग में वो घुस रहा है, नेगेटिविटी आपको अफेक्ट कर रही है, आपकी कॉन्शियसनेस को अफेक्ट कर रही है, तो आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो रही है। आपको ये समझ में नहीं आना चाहिए आ रहा कि मेरा जीवन का लक्ष्य क्या है। मेरे जीवन का लक्ष्य सिर्फ ये सब न्यूज सुनना नहीं है, मेरे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए कि ये प्रॉब्लम्स है क्यों संसार में, मुझे प्रॉब्लम से बाहर निकलना है। पर कुछ लोग ऐसा होते हैं, बस सुबह उठे, टीवी ऑन किया, रिमोट का बटन दबाया, न्यूज चल रही है, उसने उसको मारा, उसने उसको पीटा, उसने उसके घर पे चोरी की, इतने लोग मरे, इतने बम फूटे, तो पूरा समय बस यही चल रहा है, चैनल पे चैनल बदलते रहेंगे, कथा सुनने में उनको कोई रुचि नहीं है, अगर कोई धार्मिक प्रवचन भी चल रहा है, कोई अच्छी चीज भी आ रही है, उसको देखने में उनको कोई रुचि नहीं है, अगर कोई देखना भी चाहता है तो बोलेंगे क्या तुम सब पूरा दिन यही देखना चाहते हो, कुछ न्यूज सुनो, कुछ ये देखो, क्योंकि उनकी पूरी बुद्धि उसमें अटकी हुई है। और शास्त्र क्या बोल रहे, जिसकी पूरी बुद्धि इन चीजों में अटकी हुई है उसका पतन निश्चित है, उसके जीवन में कभी समृद्धि नहीं आ सकती, कभी उसके सौभाग्य का उदय नहीं हो सकता। हमारा सौभाग्य क्या है, सबसे बड़ा सौभाग्य किस चीज को बोलते हैं, हम जो बोलते हैं ना कि तुम बहुत फॉर्चुनेट हो, कुछ लोग बोलते हैं तुम्हारे पास बहुत धन संपत्ति है, अच्छा गाड़ी बंगला घर मकान है, तो तुम बहुत फॉर्चुनेट हो। फॉर्चून क्या है, किसको बोलते हैं फॉर्चून, तो शास्त्रों की दृष्टि में सबसे पहले ये मनुष्य शरीर मिलना ये बहुत बड़ा भाग्य है, कि हमें भाग्य से ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, और उस भाग्य के ऊपर भी और बड़ा भाग्य क्या है, ये मनुष्य शरीर प्राप्त करने के बाद हमें भक्तों का संग मिलना, तो वो और भी बड़ा भाग्य है। और उससे भी परम भाग्य क्या है, वो भक्तों का संग बार बार मिलते रहना, हमें भगवान का नाम जप करने की जो सब व्यवस्था है, सब सरकम सांसद है, वो मिलने की, हम वहां पर नाम जप कर सके, भगवान की कथा श्रवण कर सके, तो वो परम भाग्य है। पर हम उस भाग्य को ठुकराकर जो कुभाग्य है उसको सौभाग्य समझ बैठते हैं। तो ये मनुष्य जन्म पाकर हमें सबसे पहले करना चाहिए कि भगवान की कथा में ध्यान लगाना चाहिए, भगवान के नाम श्रवण में रुचि लेनी चाहिए। और नाम जप करना कितना चाहिए, कई बार बोलते हैं कि बैठो नाम जप करो, माला लो, भगवान का नाम का जप करो। हम लोग बोलते अच्छा एक माला कर लिया, दो माला कर लिया, बहुत हो गया, अभी कितना टाइम भगवान का नाम जप करते रहे, कितना समय कोई भगवान का नाम जप करते रह सकते हैं, सेम एक ही नाम जप करते रहो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, अरे कितना समय करते रहे। तो शास्त्र बोलते एक्चुअली करते रहना चाहिए, निरंतर करते रहना चाहिए, इतना नाम जप कर की हद कर दे, इतना नाम जप कर की हद कर दे, इतना नाम जप कर की यमराज भी तुम्हारा अकाउंट रद्द कर दे। तो हमें भगवान का नाम जप में रुचि लेनी चाहिए। ये मनुष्य जन्म पाकर ये सबसे बड़ा हमारा सौभाग्य है कि अगर हमें भक्तों का संग मिले। और कथा जब हम सुनते हैं तो कथा में पूरा ध्यान लगाकर कथा को सुनना चाहिए। हमारी परिस्थिति ज्यादातर क्या होती है, नॉट टू ऑफेंड एनीबडी, हमारी परिस्थिति क्या होती है, हम शारीरिक रूप से यहां पर बैठे हैं पर मानसिक रूप से हम कहीं और ध्यान में कर रहे हैं, होता है कि नहीं। देखोगे हजारों हजारों की लोग भीड़ बैठी है वहां पर, पंडाल में प्रोग्राम चल रहा है, कथा चल रही है, हजारों हजारों लोग बैठे हैं, पर कितने लोग एक्चुअल में भगवान की कथा सुन रहे हैं, बैठे हैं पर मन कहीं और है। और बोला जाता है कि आप वहीं पर हो जहां पर आपका मन है, वास्तव में आप वहीं पर हो, शारीरिक रूप से आप सिर्फ यहां पर बैठे हो, आपका शरीर यहां पर है पर मन कहीं और घूम रहा है और आप भी वहीं पर हो। तो लोग प्रवचन में आते हैं, कथा सुनने आते हैं, अगर पत्नी अकेली आ रही है तो ध्यान है कि पति क्या कर रहा होगा घर पे, अभी तक घर पे वापस आया है कि कहीं और ही घूम रहा है, बच्चे क्या कर रहे होंगे। अगर पति अकेला आ गया है तो उसको चिंता पड़ी हुई है कि पत्नी इंतजार कर रही होगी, जल्दी जल्दी घर जाओ, ऐसा ना हो कि पत्नी बाद में मुझे फटकार लगाएगी, इतनी देर तक कहां घूम रहे थे। तो ये सब अलग अलग तरह के थॉट दिमाग में चलते रहते हैं, पर भगवान की जब कथा सुन रहे हैं तो एकाग्रचित होकर भगवान की कथा सुननी चाहिए। तो कथा श्रवण करना और भगवान के नाम का जप करना, ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसे अभी यहां पर दो चीजों का वर्णन हुआ था कि जो भंवरा है, भंवरा जो अपना साउंड कर रहा है तो ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान का कीर्तन कर रहा है, और अन्य सब शांत हो जाते हैं और उसको ध्यान से सुनते हैं, भगवान की हरि कथा सुनना चाहते हैं, भगवान का कीर्तन सुनना चाहते हैं। और तुलसी के बारे में बताया गया, जब तुलसी का आगमन होता है तो सब झुककर उसको प्रणाम करते हैं कि तुलसी की इतनी महिमा है। तो हमें भी अपने जीवन में ये दो चीजों को धारण करना चाहिए, एक तो भगवान के नाम का कीर्तन, भगवान के नाम का जप, कि हमें रुचि बढ़ानी चाहिए भगवान के नाम को जप करने में, कीर्तन करने में, और दूसरा हमें चाहिए कि तुलसी देवी को सेवा करना, तुलसी को अपने घर पे रखना, उनको नियमित रूप से पानी देना, उनकी सेवा करना, उनकी प्रदक्षिणा करना, उनको झुककर प्रणाम करना। तो अगर हम ये दो चीजें भी करें, भगवान के नाम का जप कीर्तन, भगवान की कथा श्रवण, तुलसी की सेवा, ये सब करते करते हम भगवान के धाम जाने के लिए उसके लायक बन सकते हैं, भगवान के धाम जाने के लायक योग्य बन सकते हैं। तो भगवान के धाम कौन नहीं जा सकता,
जिसकी भगवान की कथा में रुचि नहीं है, जो अन्य विषयों में लीन रहता है, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, उसके सौभाग्य का नाश हो चुका है। और मनुष्य जन्म जो है, ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, उसकी बहुत इंपॉर्टेंस है कि अगर किसी को मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है, अगर धरती पर मनुष्य के रूप में वो पैदा हुआ है, तो वो बहुत बड़ा सौभाग्य है। ब्रह्मा जी किसको बता रहे हैं? ये सब देवताओं को, जो सब ब्रह्मा जी के पास पहुंचे हैं अपनी समस्या लेकर, तो उनको बता रहे हैं कि मनुष्य का जन्म बहुत सौभाग्य वाला है, कि हम सब जो देवी देवता हैं वो भी ये इच्छा रखते हैं कि हमें मनुष्य जन्म प्राप्त हो धरती पर, या हम भी मनुष्य के रूप में धरती पर पैदा हो। क्यों? क्योंकि मनुष्य जन्म प्राप्त करके हमें ये जो स्थिति मिलती है कि हम भगवान की सेवा में लग सके, भगवान की भक्ति में लग सके। क्योंकि जो स्वर्ग लोक है, जो ऊपर के अन्य लोक हैं, वहां पर इतना ऐश्वर्य है कि वहां पर भगवान की भक्ति कर पाना संभव नहीं है। उतने ऐश्वर्य को छोड़कर उसकी उस भक्ति में लीन होना संभव नहीं है। और वैसे भी वहां पर जो लाइफ ड्यूरेशन है वो वहां पर इतनी बड़ी है, कौन अभी ब्रह्मा जी की लाइफ कितनी है पता आपको? 311 trillion years, खरबों खरब साल तक ब्रह्मा जी की लाइफ ड्यूरेशन है, और जो देवताओं की लाइफ ड्यूरेशन है वो भी हजारों हजारों सालों की है। तो इतने लंबे समय तक कौन इंतजार करे भगवान के धाम में वापस जाने का? अगर कोई भक्ति कर भी ले देवता के रूप में, उसके लाइफ ड्यूरेशन इतना बड़ा है कि कब वो एलिजिबल होगा भगवान के धाम में वापस जाने के लिए? और मनुष्य जन्म लेगा धरती पर, 50-100 सालों में आप अपने जीवन को सफल बना सकते हो भगवान की भक्ति करके। तो इसलिए देवता चाहते हैं कि हमारी इच्छा है हम मनुष्य रूप में धरती पर पैदा हो। तो इसलिए मनुष्य जीवन की, मनुष्य जन्म की इतनी महिमा बताई गई है। मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण न भजे जाने शून्य विष खाया। अगर मनुष्य जन्म को प्राप्त कर कर राधा कृष्ण की भक्ति नहीं की, उनका स्तुति नहीं किया, तो जान बूझ कर हम विष खा रहे हैं। देखिए कितना बड़ा वाक्य बताया गया शास्त्रों में कि आप अपना पूरा जीवन व्यर्थ कर रहे हैं अगर आप भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं मनुष्य जन्म प्राप्त करके। तो उसके बाद ब्रह्मा जी बताते हैं कि ये मनुष्य जन्म पाने का जो लक्ष्य है, जो उपलब्धि है, वो क्या होनी चाहिए? भगवान की भक्ति में लगने की। जैसे चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितामृत में बताते हैं, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी उनको इंस्ट्रक्शन देते हुए चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं? ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जी, गुरु कृष्ण प्रसाद पाया भक्ति लता बीज। इस ब्रह्मांड में घूमते घूमते पता नहीं कितने हजारों हजारों जन्मों के बाद हमें गुरु और कृष्ण के प्रसाद से, उनकी कृपा से ये भक्ति का बीज प्राप्त होता है। ये हर किसी की भक्ति करने की इच्छा नहीं होती, किसी के अंदर ये भक्ति का बीज आता है गुरु और भगवान की कृपा से। और उस बीज को प्राप्त करने के बाद क्या करना चाहिए? भक्ति का बीज मिलने के बाद हमें क्या करना चाहिए? अगर किसी ने आपको कोई बीज लाकर दिए किसी सब्जी के, किसी फल के, क्या करते हो आप उसको? आप उसको जमीन में बो दोगे, राइट? तो वैसे ही महाप्रभु बोल रहे हैं कि आपको भक्ति का बीज मिला है, तो माली की तरह माली हाने करे से बीज आरोपण, कि आप आपको माली की तरह पर उस बीज को आरोपण कर देना चाहिए। कहां पर आरोपण करना चाहिए? अपने हृदय के अंदर। तो किसी फल का, फूल का वृक्ष है तो उसको आप जमीन के अंदर लगाओगे, पर ये जो भक्ति का बीज मिला है उसको आपको अपने हृदय के अंदर आरोपण करना है। और जो बाहर आपने बीज लगाया उसको कुछ और भी चाहिए कि नहीं चाहिए? पानी डालना पड़ेगा, खाद डालनी पड़ेगी, उसको सूर्य की किरणें भी चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, चंद्रमा का प्रकाश भी चाहिए बढ़ने के लिए, ग्रो करने के लिए। तो उसी तरह से आपने ये भक्ति का बीज अगर आपके हृदय में लगा दिया है, तो उसके बाद उसको भी पानी डालना पड़ेगा, खाद डालनी पड़ेगी, और वो पानी खा के क्या है, श्रवण कीर्तन जले करे सीचन, कि श्रवण और कीर्तन के माध्यम से उस भक्ति के बीज का आपको सिंचन करना चाहिए। आपको भक्ति का बीज मिला है तो भक्तों के संग में रहकर भगवान की कथा सुनो, भगवान का कीर्तन सुनो, भगवान के नाम का जप करो, जिससे वो बीज का अंकुर फूटेगा और फिर वो पौधा जो भक्ति का है धीरे 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 बढ़ेगा। उसके अंदर रेगुलरली नियमित रूप से वो श्रवण कीर्तन का पानी डालते रहने से वो पौधा बढ़ता रहेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा और वो जाके बढ़ते बढ़ते आध्यात्मिक जगत तक पहुंचेगा। वो पौधा भगवान के चरणों में जाकर शरण ग्रहण करेगा। तो मनुष्य जन्म में सबसे बड़ा जो हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारा कार्य है, वो है भगवान को जानना, भगवान के कथा का श्रवण करना, उनके नाम का जप करना। हम सबको अपने अपने ड्यूटीज हैं, पर ज्यादातर हम क्या करते हैं, शरीर के स्तर पर हमारा जो कर्तव्य है उसको पालन करना चाहते हैं। ज्यादातर सब लोग उसी चीज में रहने लगे रहते हैं कि शरीर के स्तर पर हमारा क्या कर्तव्य है। दो तरह की ड्यूटी होती है, एक होता है स्वधर्म और एक होता है सनातन धर्म। स्वधर्म क्या है, आपके शरीर के स्तर पे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तो जिस तरह का जिसका जो स्वभाव है उस तरह से हम अपना कार्य करते हैं। कोई डॉक्टर है तो वो अपना डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा है, कोई अध्यापक है तो वो अपना टीचिंग का काम कर रहा है, कोई ब्राह्मण है तो ब्राह्मण का कर्तव्य क्या है, यज्ञ याजन पठन पाठन, तो यज्ञ करना, यज्ञ कराना, पठन पाठन करना। तो शरीर के स्तर पर हमारा कुछ कर्तव्य है, वो ड्यूटी करते करते, पर उसके ऊपर हमारा क्या कर्तव्य है, आत्मा के स्तर पर। आत्मा के स्तर पर क्या कर्तव्य है हमारा, सनातन धर्म, कि मेरा भगवान के साथ क्या संबंध है, मैं उस संबंध को फिर से स्थापित करूं, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे जो शरीर के लेवल पर जो हमारा कर्तव्य है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा आत्मा के स्तर पर जो कर्तव्य है उसको निभाना। कई बार हम लोग अपना भौतिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो हमारे भौतिक कर्तव्य होते हैं, उनके अंदर इतना व्यस्त हो जाते हैं, उनके अंदर इतना मगन हो जाते हैं कि भक्ति करने का समय ही नहीं होता। हमारा पूरा समय उन सब भौतिक चीजों में चला जाता है कि भगवान की भक्ति करने का समय नहीं होता। सब लोग अपना एंजॉयमेंट करना चाहते हैं, राइट, सेंस एंजॉयमेंट, हमारा अपनी इंद्रिय तृप्ति, पर इंद्रिय तृप्ति भी, ज्यादा इंद्रिय तृप्ति करना भी कष्टदायक है कि नहीं। कोई अपनी इंद्रिय तृप्ति करना चाहता है, खूब खाना चाहता है, तो उसने ओवर ईटिंग किया तो क्या होगा, बाद में कष्ट होगा। कोई अपना इंद्रियों पे कंट्रोल ना करके, संयम ना करके, कोई शराब का पीना चाहता है, कोई सिगरेट पीना चाहता है, तो ये सब चीजें बाद में क्या करेगी, कष्ट का कारण बनेगी। किसी को लंग का कैंसर हो गया, लंग्स की प्रॉब्लम होगी, किसी को गले में कुछ अन्य तरह का कैंसर हो गया, किसी को लीवर की प्रॉब्लम हो गई, तो ये सब चीजें बाद में क्या करेगी, कष्ट का कारण बनेगी। तो जो इंद्रिय तृप्ति है अगर अधिक की जाए तो वो भी कष्ट का कारण बनती है। तो प्रभुपद यहां पर लिखते हैं कि इंद्रिय तृप्ति सबकी आवश्यकता है, कि हाँ सबको इंद्रिय तृप्ति करने की आवश्यकता है, पर वो संयम रूप से शास्त्रों के सिद्धांत के अनुसार लिमिट में करनी चाहिए। इंद्रिय तृप्ति क्या है, वो नमक के समान है। अभी नमक का सेवन आप कितना करोगे, नमक का सेवन बताया जाता है कि बहुत धीमा, बहुत थोड़ा सा करना चाहिए। अगर आप अधिक नमक का सेवन करते हो तो उससे भी प्रॉब्लम होती है। तो उसी तरह से इंद्रिय तृप्ति भी नमक के समान, कि थोड़ा बहुत सीमित रूप से, संयमित रूप से करना चाहिए। अभी कोई इंद्रिय तृप्ति करना चाहता है, ठीक है, आप अच्छा अच्छा भोजन खाना चाहते हो, खाओ, पर पहले उसको भगवान को भोग लगाओ। आपको जलेबी, रबड़ी, मलाई, जो भी खाना है, कचौरी, समोसा खाना है, बनाओ, भगवान को भोग लगाओ
और फिर उसको भगवान के प्रसाद के रूप में ग्रहण करो, तो इससे आपकी इंद्रिय तृप्ति भी हो रही है पर आप भगवान का प्रसाद ग्रहण कर रहे हो। किसी को जैसे पति को पत्नी के साथ रहना है, पति को पति के साथ रहना है, तो ठीक है आपस में रहो, पर शास्त्रों के सिद्धांत के अनुसार, ना कि अनरिस्ट्रिक्टेड वे से आप अपने आप को एंजॉय करना चाहते हो बिना किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के, बिना किसी बंधन के। तो शास्त्रों के सिद्धांत के अनुसार इंद्र तृप्ति करते हुए, अगर आप धीरे थोड़ा इंद्र तृप्ति करोगे और भगवान की भक्ति में अपना ध्यान लगाते हो, तो आप अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त कर सकते हो। पर अदरवाइज जो इंद्रिय तृप्ति है, अगर उसको अधिक करोगे तो वो भी कष्ट का कारण बनेगी। और सबको अपनी अपनी परिस्थिति को समझना चाहिए। हमारी इच्छा क्या रहती है कि हम इस भौतिक जगत में खूब नाम कमाना चाहते हैं, होते कि नहीं, हम बहुत बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां प्राप्त करना चाहते हैं कि लोग हमें बाद में भी याद रखें, और उसके लिए हम अपना पूरा जीवन इतना संघर्षपूर्ण व्यतीत करते हैं कि हमें अपने समय, खुद के लिए समय नहीं है, स्वयं के लिए समय नहीं है, अपने परिवार के लिए समय नहीं है, इतना हम संघर्षपूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं। हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब करते हैं, दोनों कमाना चाहते हैं ताकि हमको समृद्धि के साथ रह सकें, बच्चों को खूब अच्छे अच्छे स्कूल कॉलेज में भेज सकें, उनके फ्यूचर के लिए खूब पैसा इकट्ठा कर सकें। तो सबकी इस तरह की प्रवृत्ति रहती है। एक बार एक्चुअली एक गृहस्थ, एक पति पत्नी गुरु महाराज के पास गए, और जो वो महिला थी वो जॉब करना चाहती थी, तो उन्होंने जाकर गुरु महाराज को बताया कि ऐसे ऐसे वो महिला, वो स्त्री ने बताया माता जी ने कि मैं जॉब करना चाहती हूँ। तो महाराज ने एकदम से उनके हस्बैंड को बुलाया, उनको बुलाते पूछा, आपके पास धन की कुछ कमी है क्या, आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है कि अपने घर गृहस्थी चलाने में? उन्होंने बोला, नहीं महाराज ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर उन्होंने माता जी को बताया कि देखिए, यशोदा मैया थी जो, वो एक तरह से रानी थी, नंद बाबा उस पूरे एरिया के महाराज राजा थे, पूरे जितने भी गांव थे वो, और उनके घर पे बहुत सारे नौकर थे, बहुत सारी सेविकाएं थी, पर वो अपने पुत्र को, उन अपने पुत्र के लिए, कृष्ण के लिए वो स्वयं माखन बनाती थी, अपने हाथों से उनको भोजन कराती थी, अपने हाथों से उनको नहलाती थी, अपने हाथों से उनको तैयार करती थी। तो सब कार्य अपने स्वयं से करती थी उनके लिए, फिर भी चाहे उनके घर पे जितने मर्जी नौकर थे, क्योंकि जो बालक की परवरिश माता खुद कर सकती है वो नौकर वो चीज नहीं कर सकते। तो तुम्हारे लिए क्या इंपॉर्टेंट होना चाहिए, तुम्हें यशोदा मैया के पद चिन्हों पर चलते हुए अपने बालक के ऊपर ध्यान देना चाहिए, ना कि इन चीजों में कि हमें अधिक से अधिक पैसा कमाना है। अगर रियली परिस्थितियां इस तरह की हैं कि गृहस्थी चलाने के लिए दोनों को काम करना पड़ेगा, देन यस, दिस इज ओके टू फॉर हस्बैंड वाइफ बोथ टू वर्क, बट वन शुड कंसीडर व्हाट आर द थिंग्स वी आर लूजिंग बिहाइंड, व्हाट आर द थिंग्स विच आर रनिंग आउट ऑफ अवर हैंड्स। तो हमें अपनी जो पूरी कॉन्शियसनेस है उसको शास्त्रों के हिसाब से चेक एंड बैलेंस करना चाहिए, शास्त्रों की दृष्टि से, गुरु साधु शास्त्र, इसलिए ये तीन चीजें बताई जाती है, गुरु साधु और शास्त्र, ये एक तरह से चेक एंड बैलेंस है हमें अपने जीवन को सही ढंग से चलाने के लिए। तो ब्रह्मा जी ने ये सब बताया कि मनुष्य जीवन की क्या इंपॉर्टेंस है, आध्यात्मिक जगत में कौन नहीं जा सकता, और फिर उन्होंने बताया कि आध्यात्मिक जगत में कौन जा सकता है, हु इज एलिजिबल टू एंटर इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो जो लोग भगवान की कथा सुनने में बहुत उत्सुक रहते हैं, जिनको भगवान की कथा सुनने में इतना आनंद आता है कि उनको पूरा रोमांच हो रहा है भगवान की कथा सुनने में, वो लोग भगवान के धाम में वापस जाने के योग्य बन सकते हैं। भगवद गीता में भगवान एक बहुत ब्रीफ रूप से बताते हैं, 15वें अध्याय में ही भगवद गीता के, निर्माण मोह जित संग दोष अध्यात्म नित्य विनिवृत्त काम द्वंद्वे विमुक्ता सुख दुख संगे गच्छन्ति अमूढ़ा पदम व्ययम तत्। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं वो मेरे इस धाम में आने के योग्य बन सकते हैं, और उनके अंदर क्या योग्यताएं होनी चाहिए? निर्माण मोह, जो मान की भावना से और द्वेष की भावना से, जो अटैचमेंट से परे हो, जिनके अंदर ये सब ड्युअलिटीज जो है, सुख दुख मान अपमान, ये सब जो ड्युअलिटीज हैं वो ना हो, वो योग्यताओं को प्राप्त करके वो मेरे धाम में वापस आने के योग्य बन सकता है। और शास्त्र में भक्त के 26 गुण बताए गए हैं, 26 क्वालिटीज, कि वो मान से परे है, वो हमेशा दूसरों की को सम्मान देने के लिए तत्पर रहता है, भगवान की कथा सुनने में बहुत उत्सुक है, भगवान के नाम का जप करने में बहुत उत्सुक है, जो दूसरों को हमेशा सम दृष्टि से समभाव से देखता है, जिसका कोई शत्रु नहीं है। तो इस तरह से 26 गुण बताए गए हैं भक्त के। और तीसरे स्कंद के 25वें अध्याय में जब कपिल देव अपनी माता देवहूति को भक्ति के बारे में उपदेश दे रहे हैं, भक्ति के लक्षण बता रहे हैं, तो वहां पर भी वो बताते हैं कि जो साधु पुरुष हैं, जो सज्जन पुरुष हैं, उनके क्या गुण होते हैं। तो वहां पर बताते हैं, तितिक्ष्व कारुणिक सुहृद सर्वदेहिना अजात शत्रु शांत साधव साधु भूषण। तो ये साधु के ये आभूषण है क्या क्या? तितिक्ष्व, वो बहुत ही टॉलरेंट होता है, सहनशील, कारुणिका, बहुत ही कृपालु होता है वो दूसरों के प्रति, सुहृद, हर किसी को अपने मित्र भाव से देखता है, उसका कोई शत्रु नहीं है, सर्वदेही नाम, सुहृद सर्वदेही नाम, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपने परिवारजनों को, अपने मित्रजनों को, अपने पड़ोस वालों को, हर किसी के साथ वो सुहृद रहता है। अजात शत्रुवः, उसका कोई शत्रु नहीं है, शांत, हमेशा वो शांत रहता है, पीसफुल। साधव साधु अभूषण, साधव वो शास्त्रों के अनुसार कार्य करता है। तो ये लक्षण है एक साधु के, एक भक्त के, जिसकी वजह से वो भगवान के धाम में जाने के योग्य बन सकता है। तो हमें चाहिए कि हम इन लक्षणों को अपने अंदर, इन योग्यताओं को, इन क्वालिटीज को अपने अंदर कल्टीवेट करने का प्रयत्न करें, धारण करने का प्रयत्न करें। और वो धारण कैसे कर सकते हैं हम? जब हम हृदय से प्रयत्नशील होकर भगवान की भक्ति में लगे, नियमित रूप से भगवान के नाम का जप करना, नियमित रूप से भगवान की कथा का श्रवण करना, सब जगह पर भगवान का कथा श्रवण का और भगवान के नाम का जप करने का इतना महत्व बताया गया है, कलयुग में तो खास करके ये युग धर्म है भगवान के नाम का जप करना। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, कलयुग में भगवान अपने नाम के रूप में प्रकट होते हैं, और भगवान के नाम का सहारा लेकर हम इस भौतिक जगत को, जो कि एक गहरे समुद्र के समान है, हम उसको पार कर सकते हैं। तो इसलिए हमें और कुछ हम बने ना बने, पर साधु के समान जरूर बनना चाहिए। तो मैं यहां पर खत्म करूंगा एक छोटे से एंटीडोट के साथ, एक छोटा सा किस्सा। एक बार एक राजा, उसने अपने मंत्री को कुछ काम से भेजा अपने राज्य के बाहर की, तो निरीक्षण करके आओ और सब पता करके आओ कि सब कुछ ठीक है कि नहीं है। और उस राज्य में, राज्य की सीमा पर कुछ साधु लोग आकर ठहरे हुए थे, और साधु जहां पर भी पहुंचते हैं तो उनकी जैसे खुशबू ही सब जगह पहुंच जाती है, लोग आते हैं, प्रणाम करते हैं, उनके संग लेना चाहते हैं। तो ऐसे ही लोग आने लगे, बहुत लोगों का भीड़ लगा रहता था वहां पर। तो राजा ने अपने जो मंत्री को भेजा था एक सप्ताह के लिए, तो अभी समय बीत गया, एक सप्ताह बीत गया, दो सप्ताह बीत गए, पर वो मंत्री वापस नहीं आया। अभी राजा को लगने लगा मेरा मंत्री कहाँ रह गया, मुझे उसको आकर उसको मुझे सूचना देनी थी। तो राजा फिर स्वयं अपने महल से निकला कि मैं खुद जाकर देखता हूँ, अपने मंत्री को भी ढूंढता हूँ। तो ऐसे ही ढूंढते ढूंढते अपनी राज्य की सीमा पर आया और वहां पर देखा कि कुछ साधु लोग ठहरे हुए हैं, तो उसने आकर साधु को प्रणाम किया और वो बताने लगा कि मेरा मंत्री जो है वो बहुत देर से, दिनों से गायब है, मैं उनको ढूंढने के लिए आया हूं। तो साधु, एक साधु जिनके सामने राजा ने प्रणाम किया, तो बोला महाराज आपने पहचाना नहीं, मैं ही हूं आपका मंत्री। तो एक्चुअली मैं जब आया, आपने मुझे काम के लिए भेजा था, मैं यहां पर आया, देखा काफी साधु इकट्ठे हुए हैं, तो मैंने उनका संग लिया और मुझे इतना उनसे प्रभाव हुआ, मैं उनसे इतना प्रभावित हुआ कि मुझे लगा ये सब बाकी चीजें क्यों करनी चाहिए, बस साधु ही बन जाना चाहिए। पहले जब मैं आपके काम कर रहा था, आपका मंत्री था, तो हर दिन मुझे आपके सभा में आकर मैं आपको प्रणाम करता था, अभी देखिए मैं साधु के रूप में हूं और आपने आते ही मुझे प्रणाम किया। तो साधु बनना ही सबसे बड़ी बात है कि सबको साधु बनना चाहिए। साधु बनने से हमारा जो जीवन का उद्देश्य है, जो मेन उद्देश्य है, उसको हम पूरा कर सकते हैं। हम भगवान को समझकर, भगवान की भक्ति में लगकर भगवान के धाम को वापस जा सकते हैं। तो कुछ और हम करें ना करें, पर साधु बनने का प्रयत्न जरूर करना चाहिए। पर ऐसा नहीं है साधु बनने का मतलब कि हम घर बार छोड़कर जंगलों में जाकर रह रहे हैं। आप अपना काम करते हुए भी एक साधु जैसा जीवन व्यतीत कर सकते हैं, एक साधु जैसे लक्षण अपने हृदय के अंदर लेके आ सकते हैं। जब भी लोगों लगता है, अरे किसी को पूछो आप अपने बेटे को क्या बनाना चाहते हो बड़ा होकर, मेरा बेटा बड़ा होकर अफसर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, सीए बनेगा। किसी को कोई बोलता है मेरा, मैं बड़ा होकर अपने बेटे को साधु बनाना चाहता हूं, कोई नहीं बोलता। वो बोलते पड़ोसी का बेटा साधु बन जाए, मेरा बेटा तो अफसर ही बने। पर हमें प्रयत्न करना चाहिए कि हमारे बच्चों के अंदर साधु के गुण हो, साधु के लक्षण हो, उसी से वो अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। नहीं तो इस भौतिक जगत के अंदर इतनी सब कंपटीशन, इतनी मारामारी है, उसको सहन कर पाना आज के युग में और आज की जो शिक्षा प्रणाली है उसके माध्यम से बहुत मुश्किल है। तो उन सब अटैक्स को टॉलरेट करने के लिए भी जो स्पिरिचुअल नॉलेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि साथ साथ उनको जो स्पिरिचुअल नॉलेज है, शास्त्रों का ज्ञान है, वो होना चाहिए। तो हम यहां पर आज अपनी कथा को विश्राम देंगे। उसके आगे ब्रह्मा जी क्या कथा बता रहे हैं कि चतुष्कुमार वैकुंठ जगत में पहुंचे थे और फिर उसके बाद क्या हुआ, वो हम अगली बार चर्चा करेंगे। ग्रंथराज भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। अगर किसी का कुछ प्रश्न है, कोई टिप्पणी है। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। ओके श्योर प्रभु। तो स्टार्टिंग हमने शुरू कहां से किया था, हमने बताया था कि ब्रह्मा जी ये वैकुंठ जगत का वर्णन कर रहे हैं सब देवी देवताओं को। ये सब देवी देवता इस पूरे भौतिक जगत में, जब ये पूरा अंधकार छा गया नीति के गर्भ होने से, तो उस समय पर सब देवी देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और उनसे प्रार्थना किया कि आप इसका कुछ सॉल्यूशन कीजिए। तो उस समय पर ब्रह्मा जी उनको ब्रह्मा ये भौतिक आध्यात्मिक जगत का दर्शन करा रहे हैं, वैकुंठ जगत का दर्शन करा रहे हैं।
कि वहां पर चतुष कुमार पहुंचे थे और फिर क्या घटना घटी। ये एक्चुअली इनकी बैकग्राउंड है कि दीति के गर्भ में जो दो बालक आए हैं वो हैं कौन, तो उसका बैकग्राउंड है ये, राइट। तो वो आगे चल के अगले सेशन में हम उसको कवर करेंगे कि वो एक्चुअली वैकुंठ जगत में भगवान विष्णु के जो दो सेवक हैं, उनके जो डोर कीपर्स हैं जय विजय, तो वो दो लोग हैं जो कि चतुष कुमार के श्राप की वजह से वो भौतिक जगत में उनको जन्म लेना पड़ा। तो उसका पूरा बैकग्राउंड सुनाने के लिए वो ये कथा सुना रहे हैं ब्रह्मा जी, और उसमें वो वैकुंठ जगत का वर्णन कर रहे हैं। पहले तो प्रभुपाद जी अपने पर्पस में, अपने तात्पर्य में जगह जगह पर, काफी जगह पर क्या लिखते हैं कि हम सब लोग पहले वहां पर भगवान के साथ में थे, हम आध्यात्मिक जगत में भगवान के साथ थे, पर भगवान के साथ रहते रहते हमारे अंदर ये भावना आई कि भगवान कृष्ण ही क्यों इसके पूरे सेंटर में हो, मैं भी सेंटर में होना चाहता हूं, मैं आनंद लेना चाहता हूं। तो जब हमारे हृदय में ये भगवान से अलग होकर एंजॉय करने की भावना आई और भगवान के प्रति द्वेष की भावना आई, तो हम आध्यात्मिक जगत से इस भौतिक जगत के अंदर आए, और फिर इस भौतिक जगत में आकर हम ये सब जो संघर्षपूर्ण जीवन है, जन्म जन्मांतर के बाद हम उसमें जाते जा रहे हैं, और भगवान हमें वापस बुलाने के लिए बहुत तत्पर रहते हैं कि तुमने अपना एक्सपीरियंस ले लिया, तुम अलग होकर एंजॉय करना चाहते थे, पर अभी तुमने उसका एक्सपीरियंस ले लिया, तुम वापस आना चाहते हो, तो भगवान ने उसका भी पूरा प्रबंध किया है हमें वो शिक्षा देने के लिए। तो उनके क्वेश्चन के आंसर के हिसाब से प्रभुपाद क्या लिखते हैं कि हम पहले भगवान के साथ थे आध्यात्मिक जगत में, और फिर वहां से हम छोड़कर इस भौतिक जगत के अंदर आए, क्योंकि जैसे ही भगवान ने देखा कि अच्छा तुम इंजॉय करना चाहते हो मुझसे अलग होकर, तो उसके लिए तुम यहां पर नहीं कर सकते इंजॉय, वो तुम्हें यहां पर प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि यहां पर तो सब लोग मुझे मेरी ही सेवा करते हैं। अगर तुम्हें खुद की सेवा करवानी है, तो तुम्हें खुद के सेवक चाहिए, तो तुम्हारे लिए मैं एक अलग जगह का प्रबंध करता हूं, तो वो है भौतिक जगत, कि तुम वहां पर जाकर आनंद करने का प्रयत्न कर सकते हो, वहां पर आनंद है नहीं है, पर तुम उसका प्रयत्न कर सकते हो आनंद प्राप्त करने का। तो एक तो ये आंसर है जो प्रभुपाद जी के तात्पर्य के हिसाब से है, और कई बार कुछ अन्य जो टीकाकार हैं वो क्या बताते हैं, जैसे प्रभुपाद जी एक्चुअली बताते हैं वो कि हमारी जो स्थिति क्या है, हम जैसे भगवान की तीन तरह की शक्ति होती है, राइट, भगवान की अंतरंग शक्ति, बाहरंग शक्ति और एक मार्जिनल पोटेंसी, तटस्थ शक्ति। तो हम क्या है, हम भगवान की तटस्थ शक्ति है, मार्जिनल पोटेंसी। मार्जिनल पोटेंसी मीन्स वी आर लाइक ऑन द बीच शोर, वी कैन बी इन द वाटर और ऑन द सैंड। तो हम तटस्थ के हिसाब से हमने भौतिक जगत को चुना आध्यात्मिक जगत की वजह, जैसे आप मानो कि आप पहले तटस्थ पे थे, आप आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत की बाउंड्री पे थे, और आपको अभी दोनों जगह का वर्णन किया गया कि अच्छा एक आध्यात्मिक जगत है, एक भौतिक जगत है, बताओ आप कहां जाना चाहते हो, और भौतिक जगत से आकर्षित होकर हमने भौतिक जगत को चुना कि अरे यार ये बहुत अच्छी जगह लग रही है, मैं भौतिक जगत में जाना चाहता हूं, वहां पर आनंद लेना चाहता हूं, तो हमने भौतिक जगत को चुना आध्यात्मिक जगत को ना चुनकर, तो इसलिए हम भौतिक जगत में आए। पर अगर हम अपने आप को भगवान की भक्ति में लगाकर, अपने आप को योग्य बनाकर भगवान के धाम में चले जाएं, तो वहां की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, एक बार जो वहां पर पहुंच जाए तो वापस इस भौतिक जगत में नहीं आता, राइट। भगवान क्या बोलते हैं, तद धाम परमम मम।
ओके, आई हैव टू क्वेश्चन।
तो वन थिंग इज ग्वालिटी, अनदर थिंग इज वैरायटी. सो आध्यात्मिक जगत के अंदर भी वैरायटी है, पर आध्यात्मिक जगत के अंदर ये सब ड्वेलिटीज नहीं है. ड्वेलिटीज हम किसको बोलते हैं? सुख दुख, मान अपमान, शीतोष्ण, जवानी बुढ़ापा, तो इस तरह की चीजें नहीं है वहां पर. वहां पर भी वैरायटी है, वहां पर भी पुरुष हैं, स्त्रियां हैं, पशु पक्षी फल फूल, वहां पर भी ये सब चीजें हैं. No, there is no competition. It's that everybody is serving the Lord and getting his attention. It's ऐसा नहीं है कि वो एक दूसरे की टांग खींचकर अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं. तो वहां पर ऐसी चीज नहीं है, बल्कि वो एक दूसरे को आगे करते हैं. अच्छा, तुम मुझसे ज्यादा भगवान की सेवा कर रहे हो, तुम आगे आओ. तो वहां पर इस तरह का कोई कॉम्पिटिशन नहीं है कि कट थ्रोट कॉम्पिटिशन कि अच्छा मैं उसको नीचे गिराकर खुद ऊपर आगे चढ़ जाऊं. तो वो भौतिक जगत के अंदर होता है. भौतिक जगत के अंदर कोई उन्नति करना चाहता है तो उसके दो तरीके हैं. एक तो होता है कि हम अपने आप को और अधिक योग्य बनाएं, दूसरा है कि हम जो हमसे अधिक योग्य है उसको गिराकर उसके कंधों पर सर पैर रखकर हम ऊपर आगे बढ़ लें. तो ये चीजें भौतिक जगत के अंदर है. आध्यात्मिक जगत के अंदर इस तरह का कुछ कॉम्पिटिशन नहीं है. आध्यात्मिक जगत के अंदर हर कोई एक दूसरे को अधिक से अधिक सम्मान देता है कि अच्छा वो मुझसे भी ज्यादा भगवान की सेवा कर रहा है, तो वो उनको सम्मान देते हैं, उनको प्रणाम करते हैं. हाँ, तो वो तो हर किसी की इच्छा रहती है कि मैं भगवान की अधिक से अधिक सेवा करूं. उनका सिर्फ ये कोशिश रहती है कि मैं भगवान की अधिक से अधिक सेवा कर पाऊं. हरे कृष्ण रूप आपका. आपका कुछ प्रश्न?
बहुत अच्छा हो गया.
ओके, सो इफ नो मोर क्वेश्चंस देन विल स्टॉप हियर. ग्रंथराज भागवतम की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. थैंक यू. हरे कृष्ण.